अब हम श्वास को थोड़ा शिथिल करेंगे, दोनों नथुनों के बीच चित्त को केंद्रित करें, श्वास को आते जाते देखें, लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, शिथिल श्वास, लंबा, गहरा, समतल, मन शिथिल, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब हम अंतर यात्रा का ध्यान कर रहे हैं, भीतर की यात्रा, अपने चित्त को, रीढ़ की हड्डी का निचला भाग, शक्ति केंद्र, वहां केंद्रित कीजिए। देखिए शक्ति का समुन्दर लहला रहा, शक्ति का सागर, शक्ति का तालाब, शक्ति का झरना, पूरा शक्ति का समुन्दर हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे लहला रहा। अब इस शक्ति को ऊपर उठाना है, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक पतला सफेद धागे जैसा स्पाइनल कॉर्ड है। बंधुओं, हम ठीक थर्मामीटर की तरह, जैसे थर्मामीटर में पारा ऊपर चलता है, हम श्वास लेने के साथ साथ इस शक्ति को धीरे 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 स्पाइनल कॉर्ड से हम खींचते खींचते उसको छोड़ेंगे हमारा जो चोटी का भाग ज्ञान केंद्र पर। फिर हम श्वास छोड़ते छोड़ते पुनः जो है शक्ति केंद्र पर आएंगे, श्वास को भरेंगे, साथ साथ में शक्ति चलेगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और आकर के वो रिक्त होगी हमारे ज्ञान केंद्र पर। तो ये प्रयोग हमें करना है, श्वास को भरिए, शक्ति को उठाइए स्पाइनल कॉर्ड से, देखिए शक्ति स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ऊपर 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 छोड़ दीजिए ज्ञान के, श्वास को छोड़ते हुए पुनः शक्ति केंद्र पर आए, श्वास को भरिए, उस शक्ति को उठाइए स्पाइनल कॉर्ड पर, थर्मामीटर में पारा चलता है जैसे, उठाइए उठाइए, देखिए शक्ति आकर के रिक्त हो गई ज्ञान केंद्र पर, श्वास छोड़िए धीरे धीरे नीचे शक्ति केंद्र पर आए, शक्ति केंद्र पे शक्ति को उठाइए सांस के साथ में, देखिए कि वह पारे की तरह ऊपर चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही, ऊपर चढ़ करके इसको छोड़ दीजिए ज्ञान के, श्वास छोड़िए धीरे 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 नीचे आए, पुनः श्वास भरिए, शक्ति को उठाइए, देखिए पारे की तरह चढ़ रही है, चढ़ रही है, चढ़ रही है, चढ़ रही है, छोड़ दीजिए ज्ञान के अंदर, श्वास छोड़िए धीरे धीरे नीचे आइए। अब ये मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, मैं दो तीन मिनट के लिए आप स्वयं करें ठीक इसी तरीके से, श्वास के भरने के साथ उठा के ज्ञान केंद्र पर छोड़ना है और श्वास छोड़ने के साथ नीचे आना है, पुनः उठाना, उठाइए छोड़िए आइए। اس کو ایک دوسرے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، آپ سے نہیں ہوتا ہو تو نہ کریں، میں کر رہا ہوں کہ جب سانس ہم بھرتے ہیں تو گدا کو کھینچ لیجئے، نیچے جو گدا ہے ہمارا مل دوار ہے اس کو، جیسے بلیڈر کھینچتا ہے نا جب اپنا بلڈ پریشر ناپتے ہیں، تو اسے اس کو کھینچ کر کے اور سانس کے ساتھ ساتھ میں کھینچ کھینچ کر کے اور ٹھیک لاسٹ دھیان کے اندر پر چھوڑ دیجئے، اور جب سوڑ جائے تو گدا کو پنہ واپس ڈھیلا چھوڑ دیجئے اور نیچے آئیے. نہیں ہوتا ہے تو نہیں کریں، ابھیاس میں ہو تو نہیں کریں، کیونکہ یہ اس میں ابھیاس کی آوشیکتا ہوتی ہے. میں کر رہا ہوں، کر سکتے ہیں تو کریں نہیں تو نہیں کریں. گدا کو جوڑنا ہے، کریا وہی ہے، گدا کو سنکوچت کرنا ہے، سانس بھرنے کے ساتھ اٹھانا ہے اور جان کے اندر پر چھوڑنا ہے. گدا پھر واپس جھیلی، پھر سانس کو چھوڑتے ہوئے نیچے آئیں، پھر گدا کو بھیج کر کے اوپر اٹھانا. مطلب جیسے بلڈ پریشر کا جو پمپ دبایا جاتا ہے، تو ہماری گدا کو آپ اس کو بلیڈر سمجھیں، بلیڈر کو دباویں اور چھوڑیں، دباویں اور چھوڑیں. ویسے اس میں یہ گدا کو بھیج کے کرنے والا یہ بہت ہی سندر پریوگ ہے، اور اس سے شکتی زیادہ کھینچتی ہے، اور یہ دھیرے دھیرے ابھیاس ہوتا ہے تو یہ ہماری نیچے کی شکتی اوپر جان کیندر پر آتی ہے، جان کا وکاس ہوتا ہے، ترشنا ہماری کم ہوتی ہے، ویراگیہ بڑھتا ہے، بھوگ ولاس کی اچھائیں دھیرے دھیرے سماپت ہوتی ہے، اور یہ شکتی دھرم میں کام آتی ہے، گیان میں کام آتی ہے. شکتی کا یہ مارگ مارگ بدلنا ہے، مطلب ہم نے نیچے ویت جاری کی اس کو اوپر اٹھایا. مہاپرش لوگ اس کو کرتے ہیں، اور جو اس کو بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں اس کو کنڈلنی جاگرن کہتے ہیں، وہ کمبھک کے ساتھ بھی کرتے ہیں. کافی دیر تک کھینچ کر کے سانس کو بند رکھتے ہیں اور کھینچ کر کے گدا کو کھینچے ہی رکھتے ہیں، کمبھک کر لیتے ہیں، اور وہ جو ہے پائپ کی طرح وہ پارا جیسے اوپر چڑھتا 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 ہی جاتا ہے. اس طریقے ارنتے شرنم پوجا سدھے شرنم پوجا ساہو شرنم پوجان کیولی پنتم دھمم شرنم پوجان. ہماری شکتی جان کیندر پر پہنچی پربھو کی ساتھ سے، پربھو کی ساکشی سے. جو دھیان ہوتا ہے پربھو کی ساکشی سے ہوتا ہے، پربھو کے آشیرواد سے ہوتا ہے. وہ آشیرواد ہماری ہاتھ کی ہتھیلیوں پر آ گیا ہے، اور اس کو مسل کر کے اپنے دل سے جی لیا. ओम शांति ओम शांति. Oh.
तीर्थंकर परंपरा को न मान, महा तेरा पंथ की आचार्य परंपरा को न मान, महामनस्वी महातपस्वी महायशस्वी महाओजस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। कानपुर की धर्म नगरी के धर्मानुरागी भाई और बहनों, आज हमारा पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का संवत्सरी का दिन है। आज का दिन इसीलिए आता है कि हम पिछले 7 दिनों में धीरे धीरे अपनी आत्मा को भावित करते हुए, आत्मा को शुद्ध करते हुए, हमारी आत्मा के ऊपर जो ग्रंथियां पड़ी है, क्रोध मान माया लोभ घृणा ईर्ष्या मत्सर कर्मों की जो ग्रंथियां पड़ी है, उनको 7 दिन के अंदर हमने धर्म ध्यान करके ढीला किया। मैं आपको प्रतिदिन बता रहा हूं कि जब हम धर्म की साधना करने बैठते हैं तो गर्मी हमारे कार्मण शरीर को लगती है, और वो गर्मी लगने से ये ग्रंथियां ढीली पड़ती है, ग्रंथियों के अंदर जो खिंचाव है वो ढीला पड़ता है बंधुओं। और आज हम दिन भर प्रवचन सुन करके, स्वाध्याय करके, पोषद करके, ज्यादा से ज्यादा जो अस्कोरी में आ गए हम लोग, 6 प्रहरी वाले पोषित करें, 4 प्रहरी वाले पोषित करके, और सब ग्रंथियों को ढीला कर दें। ढीला करके जो सांप को सांवत्सरी प्रतिक्रमण होता है उसके तुरंत बाद एक एक से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से याद करके, उसकी शुद्ध आत्मा के दर्शन करके अप्रत्यक्ष रूप से, और फिर कल हम पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से टेलीफोन के द्वारा और भी अन्य अन्य माध्यम से एक एक से, जहां हमारा कोई तरह का दोष हुआ है, हमारा किसी भी तरह का मन मुटाव हुआ है, हमारा किसी भी तरह राग द्वेष हुआ है, कल हम उसको धोएंगे, सफाई करेंगे, काफी आज कर देंगे, कुछ कल कर देंगे क्षमा बना के दिन, और हम एकदम पवित्र हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि हर क्षण हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। जब कभी भी हमारे से दोष हो जावे, कोई हिंसा हो जावे, मिथ्या में दुखड़ा, ये छोटा से छोटा प्रतिक्रमण है, और न हो तो शाम को प्रतिक्रमण करके जो 48 मिनट का समय के साथ वह कर लीजिए। साधु संत 2 बार प्रतिक्रमण करना उनके लिए अनिवार्य है, अगर वह न हो तो पक्षी को कर लीजिए, फिर वह भी ना हो तो उसको जो है वो हमारी चातुर्मासिक पक्षी है उस समय कर लीजिए, वह भी नहीं होता तो संवत्सरी के दिन करना अनिवार्य है। और ऐसा कहा जाता है कि इस वर्ष भर में भी वो प्रतिक्रमण नहीं करता है तो विराधक होने की संभावना है। बंधुओं, हमको आराधक बनना है, विराधक नहीं होना है। आराधक होता है वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, विराधक होता है वो संसार में भटकता है। बंधुओं, तो अब हम सूत्र का वाचन, कल्प सूत्र का वाचन प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने हमारे परम पिता परमेश्वर प्रभु भगवान महावीर के 26 भवों का जो है पूरा लेखा जोखा सुना था। आज हम हमारे प्रभु भगवान महावीर इस सृष्टि में अवतरित होंगे,
उनका जन्म होगा, उसके पूर्व जो है आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा ये अवशिष्टी काल है उसके तीसरे आर्य के अंत के अंदर जो है वो ऋषि भगवान का जन्म होता है, और तीसरे आर्य का कुछ ही समय 3 वर्ष 8 मास बचता है उस वक्त भगवान का निर्वाण होता है। तीसरे आर्य के अंत से चौथे आर्य के अंत 24वें तीर्थंकर भगवान का जन्म, यानी 1 करोड़ पूर्व जो समय के बीच के अंदर जो ये 24 ही तीर्थंकर क्यों जन्म लेते हैं कि हर तीर्थंकर समय निश्चित है 1 करोड़ पूर्व और संख्या निश्चित उनका जो है वो उनके बीच का काल उनका जीवन काल एक एक तीर्थंकर का निश्चित है। इसीलिए जीवन काल निश्चित है, पूरा समय 1 करोड़ पूर्व निश्चित है तो संख्या 24 ही आती है, इसीलिए हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं। अब भगवान वैशाली के अंदर जहां जन्म लेंगे वहां का थोड़ा दृश्य आपको बताते हैं कि वैशाली का वैभव कितना। वैशाली के राजा चेतक हैं और वैशाली अभी जो वर्तमान में हमारे बिहार में है, भगवान महावीर ने जब आज से लगभग 2500 कुछ वर्षों पूर्व जन्म लिया था उस वक्त वह एक रमणीय नगरी थी और राजा चेतक है वह वहां का राजा था और उसकी बड़ी पुण्यशाली 7 पुत्रियां एक एक पुण्यशाली थी, तो उनके प्रभावती जो कि हमारे 16 सत्यों में आती है, प्रभावती पद्मावती मृगावती शिवा ये 16 सत्यों में आती है, और उनका जो विवाह हुआ था उस समय के बड़े बड़े ये जो वैशाली गणराज्य था गणतंत्र राज्य था उसका प्रधान तो वैशाली नगर था, गणतंत्र राज्य के राजा थे राजा उदयन जो कि प्रभावती के साथ विवाह हुआ, पद्मावती राजा दधिवान, मृगावती राजा शतानीक और शिवा चंद्र प्रद्योत और ज्येष्ठा राजा नंदीवर्धन के साथ में और केलना मगध के राजा श्रेणिक। श्रेणिक बार बार जो है भगवान महावीर का परम भक्त था और बार बार वो प्रश्न भी भगवान को पूछते रहे हैं और 7वीं पुत्री ज्येष्ठा है वह साध्वी बनी। अब भाई और बहनों उस वैशाली नगरी के 2 तट है, एक तो है पश्चिम तट पर ब्राह्मण कुंड ग्राम है और दूसरे तट पर क्षत्रिय कुंड ग्राम है। ब्राह्मण कुंड ग्राम में ऋषभ दत्त और देवानंदा ब्राह्मण रहते थे जो 23वें तीर्थंकर पार्श्व प्रभु के अनुयायी थे। अब भगवान के सृष्टि पर अवतरण होने का जन्म लेने का समय आया तो भगवान ने देवानंदिया की कुक्षी में अवतरण लिया अवतरित हुए। देखिए हर तीर्थंकर जब जन्म लेता है तो उनकी माँ 14 स्वप्न देखती है, तो देवानंदा को 14 स्वप्न दिखाई देने लगे और निमित्तज्ञों को जो इसकी जानकारी दी गई तो तीर्थंकर जन्म का फल बताया गया। आप देखिए अब क्या होता है कि इंद्र शकेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि तीर्थंकर होता है वह सता 3 क्षत्रिय कुल हो राजा हो सताधीश हो ऐसे कुल में जन्म लिया करते हैं, पर भगवान ने तो ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म ले लिया है। तो उन्होंने हरिण गमेशी देव को बुलाया, हरिण उनके देवता की परिषद में सभी तरह के देवता होते हैं, सभी तरह की विद्याएं कलाएं जानते हैं। हरिण गमेशी देव जो है वो गर्भ का संहरण करना जानता है, तो उसको बुलाया गया कि तुम जाओ और भगवान को देवानंदा की कुक्षी से त्रिशला की कुक्षी सिद्धार्थ की पत्नी उनके जो है गर्भ में संग्रहण करके आओ। अब देखिए वह हिरण गणेशी देव उपस्थित हुआ अदृश्य भाव से भगवान को जो है नमस्कार किया, भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं आपके गर्भ का संग्रहण करके आपको त्रिशला माँ के जो है गर्भ के अंदर स्थापित कर रहा हूँ। तो वहां से उन्होंने जो है ये कुल 83 रात्रियां हुई, भगवान 83 रात्रि तक जो है वो देवानंदा की कुक्षी के अंदर रहे। और यह दिन जिस दिन गर्भ का संग्रहण हुआ यासोदी 13 का दिन था, अब क्या हुआ कि देवानंद को स्वप्न जाते हुए थे, क्योंकि अब वहां से गर्भ संग्रहण हो चुका है तो वो जो स्वप्न आते हैं वो भगवान के अतिशय से आते हैं कि वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, तभी माँ 14 स्वप्न देखती है। तो अब वो स्वप्न जाते हुए दिखे और उधर त्रिशला की कुक्षी के अंदर भगवान स्थापित हुए हैं। तो देवानंदा को जो है उधर त्रिशला माँ को वो स्वप्न आते हुए दिखे, तो उन्होंने जो है अपने पति राजा सिद्धार्थ जो क्षत्रिय कुंड राम के अंदर निवास करते थे, वैशाली के राजा थे, तो उनको कहा कि मेरे को इस तरीके से स्वप्न आ रहे हैं। स्वप्नवेताओं को बुलाया गया, स्वप्नवेताओं ने कहा कि भुवन भास्कर जगा कल्याण करने वाला, जगत का तारण करने वाला, तारणहार महाप्रभु जो है किसी तीर्थंकर का जो है जन्म होने वाला है। तो इस तरीके से स्वप्नवेताओं ने फल बताया। 14 सपनों का एक सुंदर गीत भी है, वो भाई कावी कांतिलाल जी कावड़िया 14 सपनों का गीत आपको प्रस्तुत कर रहे हैं।
देख देख सपने मां آیا جی آیا چودہ سپنا آیا رے آیا آیا تربیر مان دیکھا جی دیکھا سجلا ماتا دیکھا رے دیکھا دیکھا سپنے رے مان ہو रत्नाती उबरा तो सागर बारवे में पद मरोवर के देखारे सपने तेरवे देवी रत्ना राजी देखण ने दुनिया है प्यासी चौदवे में लप करी आग के देखारे دیکھا سپنے رے مان دے آیا جی آیا چودہ سپنا آیا رے آیا آیا کر لی رے مان دیکھا جی دیکھا کچنا ماتا دیکھا رے دیکھا سپنے رے مان
कृष्णा माता चौदह सपन दे रही देख रही है और सपन वेताओं ने बताया कि भुवन भास का जन्म लेने वाला है। और देखिए उस जो जीव गर्भ में आया है उसके प्रभाव से चारों तरफ सुख शांति ऐश्वर्य और सब चीज वर्धमान हो रही है, बढ़ती जा रही है, धन धान्य और सब चीजों के अंदर वृद्धापन हो रहा है। अब क्या होता है कि भगवान मां के थोड़े बड़े हुए गर्भ के अंदर, तो बच्चा जब गर्भ में बड़ा होता है तो वो हिलता डुलता है, तो जब हिलने डुलने लगे तो उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरे हिलने डुलने से मां को पेट के अंदर कष्ट होता होगा, शरीर में कष्ट होता होगा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली वहां पर कि जब तक माता पिता नहीं, उन्होंने देखा कि हिलने डुलने से कष्ट होगा तो हिलना डुलना बंद कर दिया। तो हिलना डुलना बंद होकर के मां को मालूम हुआ, कृष्णा मां को, कि मेरे गर्भ को क्या हुआ, क्योंकि मेरा गर्भ हिल डुल नहीं रहा है। वो बड़ी चिंतित हुई और उन्होंने उस चिंता करने सिद्धार्थ से भी चिंता बांटी, तो इस तरीके से वार्तालाप हो रहा था तो भगवान ने अवधि ज्ञान लगाया कि अरे मां को कष्ट हो रहा है, मां को इतने से मेरे हिलने डुलने के बंद होने मात्र से कष्ट हो रहा है, तो पता नहीं क्यों भगवान को सब ध्यान पड़ता है, मैं दीक्षा लूंगा तो क्या हालत होगी। तो इस तरीके से उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया और बंद करने से हिलना डुलना पुनः जो है वो हिलने डुलना चालू हो गए। तो फिर मां को बड़ी प्रसन्नता हुई, उस वक्त उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। ये उनका माता पिता के प्रति विनय भाव था। अब देखिए कि गर्भकाल पूरा हुआ है और वो समय था ईसा पूर्व 599, ठीक है ना, तो चैत्र शुक्ला 13 को मध्य रात्रि का समय है, उत्तरा फागुनी नक्षत्र है और उस नक्षत्र में इस भुवन का भास्कर और जो होने वाले भावी तीर्थकर भगवान महावीर के जीव ने जन्म लिया। अब जब जन्म लेते हैं तो देवताओं की ड्यूटी होती है, वो क्या क्या ड्यूटी होती है कि 56 दिव्य कुमारियों ने प्रसूति यानी उनके जो है वो जन्म का जो होता है कार्य वो प्रसूति कर्म संपन्न किया। अब जन्मोत्सव मनाने के लिए पहले देवता जन्मोत्सव मना लेते हैं तो उनको भगवान को सौ धर्म देवलोक इंद्र जो है सौ धर्म देवलोक का जो इंद्र था वो उपस्थित हुआ और उपस्थित होकर के वो छोटे बालक को अपने हाथ के अंदर लिया और उसका प्रतिरूप जो है बना करके माँ के जो है गोद के अंदर रखा। तो अब वो मेरु पर्वत के पुंडरीक वन के अंदर देवता गण पहला जन्माभिषेक मनाने के लिए भगवान को ले जाते हैं। तेसर इंद्र वो देवता गण उपस्थित थे। अब क्या हुआ, इंद्र को मन में शंका हुई कि ये छोटा सा बालक और इसके ऊपर हम जब जन्माभिषेक करेंगे कई तरह का अभिषेक होगा तो ठंड लग जाएगी, क्या सहन कर पाएगा, जुकाम हो जाएगा, ऐसा शंका हुई। तो शंका होने से भगवान ने अवधि ज्ञान लगाया कि इंद्र को मेरे बल के बारे में शंका है। तो उन्होंने जो है वो जिस पर्वत पर थे अपने एक पांव की अंगुली से उस पर्वत को स्पर्श किया और पर्वत दोलायमान हुआ, हिलने लगा। तो जो इंद्र उसने भी अवधि ज्ञान लगाया और उसने भगवान को नमस्कार किया कि भगवान मैं आपकी शक्ति को पहचान लिया मैंने। जो भगवान अत्यंत बली होते हैं उनके अनंत बल होता है उनके अंदर। तो अब देखिए सारे नगर के अंदर उत्सव मनाया जा रहा है, कैदियों को मुक्त किया गया और इंद्रपुरी के समान जो क्षत्रिय कुंड ग्राम था नगरी थी सजाई गई और नागरिकों का कर माफ कर दिया गया, धन धान्य की खूब वृद्धि हुई। तो अब उनका नामकरण होता है। तो सिद्धार्थ ने अपने पूरी परिषद को राज्य परिषद को और सभी जनता को बुलाया, भोज दिया और ये उसने अपनी भावना प्रेषित किया कि जब से ये जीव गर्भ में आया तब से लगाकर जन्म तक है हमारी नगरी में हर चीज वर्धापित हो रही है, धन धान्य हीरे पन्ने माणक मोती सुख शांति आनंद। तो इसीलिए मैं जो है वो इसका नाम वर्धमान रखा जाए, ये आप लोग अगर सहमति दें सबकी सहमति से इनका नाम वर्धमान रखें। सभी ने जय जयकार के नारे लगाए, जय वर्धमान और उनका नाम वर्धमान रखा गया। अब बाद में भगवान के बल के कारण उनका नाम महावीर, शमन परंपरा के स्थापित के कारण शमन और ज्ञातपुत्र आदि नाम प्रचलित हुए। अब भगवान का जीव स्नेह स्नेह जो है भगवान स्नेह स्नेह महावीर बड़े हो रहे हैं। आठ वर्ष के अंदर प्रवेश किया तो बच्चों के साथ बच्चे खेला करते हैं तो एक आमल की क्रीड़ा, उस वक्त में आमल की क्रीड़ा क्या होती थी कि बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ते और उतरते, कौन जल्दी चढ़ता है कौन जो है जल्दी उतरता है, यह प्रतियोगिता करने लगे बच्चे और पेड़ के ऊपर खेलने लगे। अब क्या है कि वहां पर एक देवता जो है वो भगवान की शक्ति का परीक्षण करने के लिए वो हाजिर हुआ और वह एक जो है सर्प का रूप बना करके वह एक उसी पेड़ की टहनी पर लपट गया और सब बच्चे तो जो है वो डर करके नीचे आ गए। भगवान ने उसको रस्सी की तरह पकड़ करके उसको फेंक दिया। ठीक है, अब क्या होता है, एक दूसरा खेल भगवान युवा अपने बच्चे की अवस्था बालक अवस्था के में खेल रहे हैं, वो होता है कि पेड़ एक दो बच्चे जो है वो दौड़ते हैं पेड़ के हाथ लगा करके, पहले कौन पेड़ के हाथ लगा करके अपने स्थान पर आता है। तो एक देवता जो है वह जब इंद्र ने प्रशंसा की किस तरीके से अत्यंत बलिष्ठ है भगवान, तो उनकी परीक्षा करने के लिए वो पुनः देव जो है वो आया और वह स्वतः जानबूझ करके हार गया। और इस क्रीड़ा के अंदर जो हारता है बच्चा वह घोड़ी बनता है, जीतने वाला उसके ऊपर बैठता है। तो वो अपने इच्छा से हार गया और भगवान को घोड़ी पर बिठाया, महावीर को, वर्धमान को, और वह देवता था तो रूप को बढ़ाना जानता था। उसने अपने शरीर को तार वृक्ष की तरह बड़ा 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 लंबा करता गया अपनी माया से। तो भगवान ने देखा ये तो मायावी देव है, तो उसने तुरंत उसके एक जो है मुष्टि का प्रहार किया और वो देवता जो वापस धराम से पृथ्वी पर आया और उसने नमस्कार किया कि जैसा इंद्र ने आपकी प्रशंसा की आप उसमें बलिष्ठ हो, मैं तो आपको आपकी जो है देखने आया था और भूरी भूरी और आपका प्रशंसक बन के जा रहा है। तब देखिए भगवान ने 8 वर्ष संपन्न कर लिए है और सिद्धार्थ हर माता पिता अपने बच्चा जो बड़ा होता है तो स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं, तो सिद्धार्थ राजा जो है 8 वर्ष की उम्र होने के बाद उनको जो है पढ़ाने के लिए ले गए। एक जो वहां पर जो जती जी पढ़ाते थे जो आचार्य थे उनके पास में ले गए और वो ऊंचे स्थान पर बैठे थे और भगवान महावीर जो नीचे स्थान पर बैठे। अब क्या है इंद्र जो है ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हुआ कि ये जो है वो भगवान को क्या पढ़ाएंगे आचार्य जी, तो वो एक ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हुआ और उसने व्याकरण के प्रश्न जो है आचार्य जी को पूछने चालू किए। आचार्य जी उन प्रश्न व्याकरण के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, भगवान को पूछा गया तो भगवान ने धड़ाधड़ जो है उन जो है जो जो प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो और वो अपने असली रूप में प्रकट हुआ इंद्र और उन उपाध्याय जी जो पढ़ा रहे थे उनको कहा कि ये स्वयं भगवान है, आप इनको क्या पढ़ाओगे। इस तरीके से भगवान पुनः अपने जो है वो राज दरबार के अंदर आ जाते हैं और भगवान किशोर अवस्था में आ जाते हैं। और किशोर अवस्था में जब कोई भी आता है तो माता पिता उसकी विवाह की तैयारी करते हैं, विवाह के बारे में एंगेजमेंट का सोचते हैं। तो अब क्या है कि इनके सगाई का जो कार्य है वो उनके मित्रों को सौंपा गया, महावीर के जो मित्र थे उनको ये कार्य सौंपा गया और वर्धमान ने मित्रों ने बहुत कहा लेकिन वर्धमान ने शादी की हाँ नहीं भरी। लेकिन माता त्रिशला ने कहा कि तेरी इच्छा नहीं है पर मेरी इच्छा तेरी शादी करने की है। वो बहुत विनयवान थे माता के, तो उन्होंने माँ को राजी रखने के लिए माँ की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने हाँ भरी। हाँ भरने पर बसंतपुर नगर और राजा समवीर की पुत्री और उसकी माता का नाम पद्मावती की पुत्री यशोदा के साथ भगवान का धूमधाम से विवाह हुआ और एक प्रिय दर्शना पुत्री का भी जन्म हुआ जो है यशोदा जी से। तो और उसका विवाह जमाली के साथ हुआ। आगे प्रसंग आएगा कि प्रिय दर्शना और जमाली भी दीक्षा लेते हैं। लेकिन दिगंबर परंपरा कहती है भाई और बहनों कि भगवान ब्रह्मचारी थे, भगवान ने कोई शादी नहीं की। तो हमारी और दिगंबर की परंपरा में और भी बहुत से भेद अंतर है लेकिन हमारी श्वेतांबर परंपरा ये मानते हैं कि भगवान ने शादी की उनके पुत्री हुई। अब आप देखिए कि 28 वर्ष के हो गए भगवान और 28 वर्ष की अवस्था में उनके माता पिता का आयुष्य पूरा हुआ और दोनों अनशन पूर्वक 12वें देवलोक में नैरदिक देव बने। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई भगवान की कि माता पिता के रहते दीक्षा नहीं लूंगा। माता पिता देवलोक गए तो भाई नंदीवर्धन को जो है उन्होंने कहा कि अब मुझे दीक्षा की, बड़े भाई को बोला कि मुझे दीक्षा की आज्ञा दो। नंदीवर्धन ने बड़े जो है रुआते भाव से कहा कि अभी तो माता पिता देवलोक गए हैं, अभी शोक हमारा संबंध भी नहीं हुआ है, हमारे मन में अभी दुख है, उनका कष्ट है और तुम अभी चले जाओगे तो उस कष्ट के अंदर और वृद्धि हो जाएगी। तो अपने भाई के प्रति भी विनय रखते हुए भगवान ने 2 साल की अवधि जो है और बढ़ा दी। अब क्या हुआ कि भगवान 29 वर्ष के हो रहे हैं, भगवान का अर्थ है होने वाले भगवान, 29 वर्ष के हो रहे हैं। तो 1 वर्ष पूर्व दीक्षा के 1 वर्ष पूर्व देवताओं की ड्यूटी है, वो नौ लोकांतिक देव कहलाते हैं, वो आके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने संसार का कार्य संपन्न किया है, अब आप धर्म के जो क्षेत्र में प्रवेश कीजिए, दीक्षा लेकर के जन कल्याण का मार्ग आप प्रशस्त कीजिए। लोकांतिक देव आए, भगवान को दीक्षा हेतु निवेदन किया कि आप धर्म दीप का प्रवर्तन करें। अब उसी समय से भगवान, एक नियम है कि जब लोकांतिक देव जब प्रार्थना करते हैं, एक वर्ष दीक्षा का बाकी होता है, तो हर तीर्थंकर जो है वर्ष की दान, पूरे वर्ष भर अपनी जनता को दान देते हैं, और ये दान देने का खजाना है, वो देव लोग देवताओं की सहयोग से जो है वह खजाना भरा जाता है। प्रतिदिन भगवान एक प्रहर तक दान देते हैं, एक प्रहर में 1,08,00,000 सोनैया मुद्राओं का दान देते हैं। इस वर्ष इस तरह पूरे वर्ष में 3,88,00,000 मुद्राओं का दान दिया गया। अब भगवान की दीक्षा का समय नजदीक आ रहा है, काका उनके भगवान के काका यानी सिद्धार्थ के छोटे भाई सुपाशु और भाई नंदी वर्धन ने दीक्षा की तैयारियां की। चंद्रप्रभा सुख पालिका में भगवान को बिठाया गया, झारखंड वन अशोक वृक्ष के नीचे सुख पालिका को रखा गया, उसको अपने बग्घी को, और भगवान ने पंचमुष्टी लोच किया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सिर के चार भाग और बीच का पंचमुष्टी लोच है। तो देवों ने वो थाल के अंदर केस रखे और क्षीर सागर में प्रवाहित किए, और भगवान ने सूत्र का उच्चारण किया, नमो सिद्धानं सप्पं मे अकर्णिजं पावं कम्मं। अब से मेरे लिए सब पाप अकरणीय हैं। उन्होंने सामायिक चरित्र को ग्रहण किया और अभिग्रह किया, कोई भी देव तिर्यंत मनुष्य जीव कोई भी मेरे इस शरीर को किसी भी तरह का कष्ट दे तो मैं उसको संभाव पूर्वक जो है सहन करूंगा। भगवान है आत्म प्रदेशों के अंदर चले गए। अब क्या हुआ, तो धर्मेंद्र ने भगवान के कंधे पर एक देवदुष्य वस्त्र रखा और झारखंड के विहार पर भगवान मुहूर्त पर दिन रहते हुए कुरमार ग्राम पहुंचे। ये भगवान की साधना का जो 12.5 वर्ष का समय है अब यहाँ से प्रारंभ होता है। उनका साधना काल हमने आपस में अपना अपना प्रवचन विभाजित कर रखा है, तो अब साधना काल जो है प्रारंभ हो रहा है। साधना का पहले वर्ष से लगा के 12 वर्ष तक की 12.5 वर्ष की जो है चंदना के उद्धार तक का सारा विवेचन प्रवचन आपको भाई शांतिलाल जी कावड़िया प्रस्तुत कर रहे हैं।
नहीं तो दूसरो जगरी, नहीं तो दूसरो महारी, संगम दुख दिया आकरा पिन सुप्रसन्न नीर जगोदार हुए मोथ कीरे ते डूबे इन काल, नहीं तो दूसरो जगरी, निंदा ने तो समपणे मानव
सम्मानीय उपासक श्रीमान दादे साहब, संवत्सरी महापर्व की आराधना में संलग्न कानपुर के श्रावक श्राविकागण, जैसा कि अभी भगवान महावीर का बचपन, विवाह और दीक्षा तक का वरदान बड़े ही रोचक शब्दों में हमने सुना और आगे का वर्णन है भगवान महावीर के 12.5 वर्षों का साधना काल। इस साधना काल में भगवान को कहीं कष्ट आए, कहीं उत्तर आए, यह काल बड़ा ही संघर्ष भरा रहा। तो भगवान निश्चित होने के बाद कर्मार गांव पधारते हैं और गांव के बाहर ही ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। कुछ ग्वाले अपने बैलों को लेकर आए और यह कहकर कि हमारे बैलों का ध्यान रखना, और वो ग्वाले को चले गए और बैल अब भगवान को ध्यानूर थे, कौन ध्यान रखता। तो बैल तो चलते चलते कहीं निकल गए, सांझ का टाइम हुआ और वो ग्वाले वापस आए भगवान के पास कि हमारे बैल कहाँ है। अब भगवान के लिए जवाब दे थे, उन्होंने सारी रात उन बैलों को ढूंढा और बैल भी अपना सर चरा के अपना पूर्ति करके वापस आके भगवान के पास बैठ गए। और जब ग्वाले रात भर थक हार के वापस भगवान के तरफ आए तो देखा बैल तो वहीं बैठे हुए कि हो ये भगवान ने इधर उधर बैलों को किया है। तो वो उन पर कोड़े बरसाने के लिए तत्पर हुए तो इंद्र वहां पर आया और उनको मूर्ख वालों को समझाया कि ये तो भगवान है और ये ध्यानस्थ ध्यानस्थ खड़े है, तुम्हारे इनका ध्यान रखने वाले नहीं है। इस प्रकार वो गालों को समझाया और सत्येंद्र इंद्र ने भगवान को प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके कर्म बहुत है और उत्सर्ग कष्ट बहुत आने वाले हैं, आप कहो मैं आपकी सेवा में रहता हूं। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अर्हत कभी दूसरों के बल पर साधना नहीं करते, वह अपने कर्मों का निवारण स्वयं ही करते हैं। इस प्रकार वहां से भगवान महावीर याद करके कोला सन्निवेश में पहुंचे और वहां पर बेला था उनके, जब दीक्षा ली तब बेले बेला था वहां पर तीर से आनंद किया। जब दीक्षा ली तब भगवान को बहुत ही सुगंधित द्रव्यों से विलेपन किया गया था, उसके कारण कई चीटी भंवरे मक्खी मच्छर आदि उनके आगे तीक्ष्ण दंश भी लगाते, मगर भगवान सब कुछ कम भाव से सहन करते। के अलावा भी उनका शरीर का मांस भी नोचते, रक्त भी पीते, कभी कभी सर्प दंश भी लगाते, फिर भी भगवान सब कुछ सहन करते। कुछ युवक भी आते, उनके जो शरीर से सुगंध फूट रही थी, युवक भी आते और वो कहते भगवान से कि आपने ऐसा क्या चीज लगाई है जो आपके शरीर सुगंध से फूट रहा है, हमें भी ऐसा चूरण दो। लेकिन भगवान तो कुछ बोलते नहीं, तो उनको गालियां देकर चले जाते, उनको नाना प्रकार से कष्ट भी देते और कुछ मन चले प्रचंड भी आती, युवतियां भी आती और वो काम की पासा की कामना भी करती, मगर भगवान तो अपने में समता में लीन थे तो वो उनको तरह तरह से कष्ट भी देती। इस प्रकार भगवान खुले शरीर होने से भी सर्दी गरीबी के अलावा दंश मतलब काफी पूरा परिचय रहता और सर्प आदि तो उन्हें काटते ही थे और वह प्राय साधना काल में नींद नहीं लेते और जब नींद सताती तो थोड़े बहुत चक्रमण करते थे तो नींद चली जाती उड़ा लेते। विहार प्रसंग में वो कभी अगल बगल नहीं देखते, पीछे मुड़कर नहीं देखते, मार्ग में किसी से बात नहीं करते थे और प्राय तपस्या में रहते थे। तपस्या और ध्यान यही उनके साधना के अंग थे, तपस्या और ध्यान। तो साधना के पहले वर्ष में भगवान मोरा सन्निवेश पधारे। मोरा सन्निवेश में द्विजनतप दासों का आश्रम था और वो कुलपति भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ का मित्र था। तो महावीर वहां आए और एक दिन वहां रुके और जब वापस वहां से विहार करने लगे तो तापसों के अधिपति ने कहा कि आप चातुर्मास यही बिताए, तो भगवान महावीर कुछ दिनों तक आस पास के क्षेत्रों में विहार करके वापस वहीं पर मोरा निवेद में उसी आश्रम में आए और चातुर्मास के लिए वहां पर मानस अवस्थित हो गए। एक कुटीर था तो देखिए वहां उसी वर्ष में बारिश कम हुई और जो कुटीर आश्रम के जो कुटीर बने हुए थे वो घास फूस के बने हुए थे, तो बरसात कम होने से जंगलों में वगैरह में घास नहीं हुई, तो जो भी जंगली जानवर वगैरह थे वो घास करने के लिए वो आश्रम में आते और जो कुटीरों की घास थी वो खा जाते। तो दूसरे जो आश्रम में रहने वाले थे वो तो उसकी रक्षा कर लेते, उसको डंडे से वगैरह से भगा देते, लेकिन भगवान महावीर तो ध्यान में रहते, वो खुद अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते तो पूर्ण कुटीर का कैसे रखते। इस प्रकार ये दृश्य जब उन्होंने वहां पर रहने वाले अन्य दासों ने देखा तो उन्होंने अपनी शिकायत कुलपति को की कि आप कौन से मेहमान को लेकर आए जो अपने पूर्ण कुटीर की भी ये रक्षा नहीं कर सकता है। तो उस कुलपति ने भगवान महावीर को निधि शब्दों में उपालक देते हुए कहा कि हे हे महावीर, हे कुमार, एक पक्षी होता है वह भी अपने घोंसलों की रक्षा करता है, तो तुम तो क्षत्रिय कुमार हो, तुम इस कुटीर का ध्यान रखा करो। तब भगवान ने सोचा कि यहां रहना मेरे लिए अप्रीति कर दे, मैं ऐसे स्थान में नहीं रह सकता जहां मेरी साधना में हस्तक्षेप हो। यह जान करके भगवान ने वहां से विहार कर दिया और उन्होंने पांच प्रतिज्ञाएं ध्यान की और वो प्रतिज्ञाएं हैं, मैं अप्रीतिकर स्थान में नहीं रहूंगा, प्राय ध्यान में अवस्थित रहूंगा, प्राय मौन रहूंगा, हमेशा हाथ में ही भोजन करूंगा और ग्रहस्थों का विनय नहीं करूंगा। और वहां से एक वक्त 15 दिन वहां मोरा सन्निवेश में बिताया। भगवान महावीर ने पहला चातुर्मास खाली 15 दिन बिताया और वहां से विहार कर दिया और विहार करके अच्छी ग्राम बताए। और भगवान ने जैसे घटना पहले भी बताई थी, अच्छी ग्राम में यक्ष भूलमानी यक्ष का मंदिर है, तो वहां पर रहने की आज्ञा मांगी। गांव वालों ने मना किया कि प्रभु यहां मत रहिए, यहां पर एक यक्ष रहता है वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, आप यहां गांव में रहे, मगर भगवान तो यक्ष मंदिर में रहे। सांझ के समय इंद्र शर्मा नाम का पुजारी वो भी वहां आया, उसने पूजा अर्चना करने के बाद में भगवान को कहा कि अब आप गांव में चले, रात होने को है और यहां यक्ष प्रकट होगा, वो बहुत नाना प्रकार से कष्ट दे सकता है, मगर भगवान तो स्नान पड़े गए। इधर सांझ हो गई, रात का समय, वो यक्ष प्रकट हुआ और अपने मंदिर में एक मानव आकृति को देखा और उसने जाना कि गांव वालों ने लोगों ने इस महीनों को मना किया, फिर भी ये यहीं पे खड़े, ये मेरी दृश्यता है, इसलिए उन्होंने हाथी के साथ जोर से अठार किया और हर्ष किया और उस हर्ष इतना कंपन वाला था कि पूरा जंगल प्रदेश कंपायमान हो गया। गांव वालों की छातियां भड़कने लगी कि कौन हो, क्या होगा, फिर भी भगवान तो ध्यानों खड़े हैं, समता में खड़े हैं। तो उसने हाथी पिशाच का रूप बनाकर भगवान को पचाड़ा लताड़ा, मगर भगवान तो अपने आप में ही समाविष्ट थे, समता में रहे। फिर भगवान के नख आंख हाथ आदि में आंखों में नाकों में आ गई, 14 स्थानों में भयंकर वेदना थी। ऐसी वेदना की अगर सामान्य वाद में आदमी को ऐसी वेदना हो तो वो कहां संकेत हो जाए, मगर भगवान अपने क्षमता में लीन रहे। इस प्रकार जब वह यह कष्ट देकर भगवान को थक गया तो वह उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और अपने स्थान पर चला गया। इस प्रकार शेष रात्रि वहां पर बड़े ही शांति से और वहां से गुजरी और उसी रात्रि में नीरव वातावरण में भगवान को थोड़ी सी चंद्रा आई, नींद आई और उसने भगवान ने 10 स्वप्न देखे जिसका वर्णन पहले भी किया कहा गया था। उसमें से एक छोटा स्वप्न था 2 मालाओं का वर्णन, और जो सवेरे होने पर 80 ग्राम के लोग और उनके साथ में एक उत्पल निमित्त था, स्वप्न पाठक था, जो भगवान पास की परंपरा में साधु भी रहा था और वह किसी कारण से वापस ग्रस्त बना, मगर वो शास्त्रों का जानकार था, निमित्त था, उसने भी भगवान का देखा और उन्होंने उसने अपने ज्ञान से जाना कि भगवान को रात में 10 स्वप्न आए थे। 9 स्वप्नों का उसने अर्थ बता दिया मगर 1 स्वप्न का नहीं बताया। तो भगवान से भी उसने पूछा कि दो मालाओं का वर्णन जो था जो था उसका क्या अर्थ होता है। तो भगवान ने उसका प्रतिपादन किया और कहा कि मैं दो धर्मों की प्ररूपना करूंगा, एक अंगार धर्म अगार धर्म, एक होगा साधु का धर्म जिसके पांच महाव्रत होंगे और एक होगा श्रावक धर्म जिसके बारह व्रत बताए। यहां प्रश्न एक ही खड़ा होता है कि जब निमित्तज्ञ था इतना जानकार था तो फिर उसे दो मालाओं का वर्णन क्यों नहीं मालूम पड़ा। तो कारण यही है कि भगवान ऋषभ और भगवान महावीर पहले और चौथे तीर्थंकर के समय में पांच महाव्रत थे, मगर शेष 22 तीर्थंकरों के समय में चातुर्याम धर्म था अर्थात ब्रह्मचर्य को भी अपरिग्रह के अंतर्गत ही ले लिया था, इसलिए वो चतुर्याम धर्म को जानता था, पांच महाव्रतों को वो नहीं जानता था। इस प्रकार वहां के 28 धाम का प्रवास भगवान महावीर ने पूरा किया और दूसरे वर्ष में भगवान वहां से ज्ञात कर मोरा सन्निवेश बताए। मोरा सन्निवेश में एक अचंदक नाम का एक पंडित या ब्राह्मण था अन्य देवी और वो मंत्र तंत्र आदि के द्वारा अपनी आजीविका चलाता था। तो भगवान वहां पर पधारे और उसका वो कारण उसका नाम भी मशहूर था। तो भगवान का नाम मशहूर करने के लिए सिद्धार्थ नाम के देव ने कुछ चमत्कार दिखाने चालू कर दिए। इस प्रकार लोग उसके यहां नहीं जाते और भगवान के चरणों में आते, भगवान के यहां पे आते। तो उसने सोचा अगर यही पोजिशन रही, यही दशा रही तो मेरे को तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, मेरे यहां पे कोई आता नहीं है। तो भगवान के पास में पहुंचा और भगवान को निवेदन किया, हे प्रभु आप तो आप अन्यत्र चले जाए क्योंकि यहां पर रहने से मेरी आजीविका तो बंद ही हो गई है और मैं दुखी हो जाऊंगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना पर ध्यान दिया और वहां से विहार वाचाला की तरफ विहार कर दिया। बंधुओं हम इस घटना से अपने आप को जोड़े, अपने जीवन को जोड़े। भगवान महावीर जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, एक राजा के पुत्र थे और राजा की मंत्र से थे, सब कुछ मतलब धन माल से संपन्न थे, फिर भी वह सब कुछ छोड़ करके एक साधु बने। और एक तरफ जब अन्य तिथि उन्हें निवेदन कर रहा है तो करुणा करके भगवान ने वहां से विहार कर दिया। इतनी दया थी, इतना करुणा थी, अन्य अन्य संप्रदाय के लोगों के प्रति, अन्य तीर्थों के प्रति भी भगवान के मन में कितनी दया थी। हम अपने आप को जोड़े, हमारा सगा भाई है, हमारे पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है मगर उसके पास खाने के लिए बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, क्या हमने उस पर ध्यान दिया है कभी? हम नाम के लिए, हम चढ़ावे के लिए मंदिरों में बोलियां बोल देते हैं मगर हम भाई की तरफ कभी ध्यान नहीं देते, हमारे परिवार पर ध्यान नहीं देते। क्या भगवान को उन सब की चीजों की जरूरत है? मंदिर में कितने चढ़ावे कर रहे हैं मगर हम उस पर ध्यान नहीं देते। कहा भी गया है मंत्र में कि महावीर के चित्र को हमने क्या से क्या बना दिया, महावीर के चित्र को हमने क्या से क्या बना दिया, सोने के मर्द सम्राट जैसा बना दिया। बन नहीं पाए उन जैसे हम, बन नहीं पाए उन जैसे हम मगर जैसा हम थे वैसा उन्हें बना दिया। भगवान को धन की अपेक्षा नहीं थी मगर हम मंदिरों में चढ़ावा कर रहे हैं मगर भाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये है आज की ये दर्द मनोदशा। तो भगवान वाचाला की तरफ विहार कर रहे हैं। वाचाला के दो हिस्से, उत्तर वाचाला दक्षिण वाचाला, भगवान दक्षिणी वाचाला की तरफ से उत्तर वाचाला आ रहे हैं। रास्ते में सुवर्ण वालिका, रौप्य वालिका नदी भी थी, तो वहीं विहार करते करते उस कंचनी भाइयों में जो देवदूत वस्त्र था वो वहीं पे अटक गया। उसके बाद में भगवान पूर्ण रूप से अचेल रहे और वह वस्त्र 13 महीनों तक भगवान के कंधे पर पड़ा रहा, उसके बाद पूर्ण रूप से अचेल। तो उत्तर वाचाला जाने के दो मार्ग थे, एक कनखल आश्रम से होता हुआ अंधीर से होता हुआ जाता था, वो मार्ग लंब निरापद था, मतलब लंबा तो था सीधा था मगर उस पर कई दुर्जन मार्ग था, भयंकर मार्ग था। और एक था बाहर वाला मार्ग, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था लेकिन दुर्जन नहीं था, उस पर कोई ऐसी संभावना नहीं थी। तो भगवान ने भीतर वाला मार्ग अर्थात सनक कर आश्रम के भीतर वाले मार्ग को पसंद किया जो भयंकर मार्ग था। वाले मिले रास्ते में, कहा कि आप इस रास्ते से मत जाइए, बाहर वाले रास्ते से जाइए, यहाँ पर एक दृष्टि भी सब रहता है, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, जो कि दृष्टि पड़ती है वह मर जाता है। लेकिन भगवान ने नहीं सुना और भगवान ने आकर जहाँ पर एक सर्प का बिंब था वहां पर आए और ध्यानारूढ़ हो गए। उधर एक सर्प जो कनकसल आश्रम में घूमकर पूरे दिन भर घूमकर अपने बिल की तरफ आया और देखा एक मानव आकृति मेरे बिल के सामने खड़ी है, तो उसको बहुत क्रोधित आया और उसने अपनी बीच भरी दृष्टि भगवान पर डाली, मगर भगवान निश्चल खड़े थे, तो बहुत क्रोधित हुआ और दो तीन बार दृष्टि बीच भरी दृष्टि भगवान पर डाली। साधारण मानवी तो कब का भस्म हुआ होता, लेकिन भगवान पर उस दृष्टि का कोई असर नहीं हुआ। तब वह अपने थोड़ा सा पीछे हटा और पूर्ण वेग के साथ भगवान के डंप लगाए, तीन बार डंप लगाए और रक्त की धारा बहने लगी, मगर उस रक्त में भी दूध का स्वाद पाकर वह सर अचंभित हो गया और भगवान महावीर के मुंह की तरफ शांत मुद्रा को देखने लगा कि ऐसा कैसे हो गया। तब उस सर को शांत जानकर भगवान ने कहा कि उत्तम हो चंद को लिए उत्तम हो, हे चंद को भी शांत हो जाओ। जब यह नाम चंद कोशिक उसने सर्प ने सुना, उसे लगा कि यह नाम कहीं कहीं मैंने सुना हुआ है, उसके भीतर उहापोह होने लगी और इसी उहापोह में उसे पिछले के तीन भव का जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और पहला भव था उसमें वह एक मुनि था और उसके पांव के नीचे से एक मैन की मर गई और उसका जो शिष्य था उसने उस मुनि को कहा कि तुम प्रायश्चित कर लो, मैन की तुम्हारे से पांव से मरी है। लेकिन उसको और उसने मुनि ने कोई ध्यान नहीं दिया। बार बार उसके शिष्य ने जब ये कहा तो वो डंडा लेकर उसको मारने के लिए दौड़ा, कुछ सांझ का समय होगा तो और गुस्से में था तो कुछ ध्यान रहा नहीं और बीच में स्तंभ था, स्तंभ से टकराया और वो मुनि वहीं ढेर हो गया और कुछ देर छोटा मोटा देव ज्योतिषक देव बना और वहां से आयुष पूर्ण कर उसी कनकल आश्रम में उसी आश्रमपति का पुत्र बना और उसका नाम दिया गया कौशिक। कौशिक बड़ा ही उदंड और तीव्र प्रकृति का था, क्रोधी प्रकृति का था, इसलिए लोग उसे चंद कौशिक कर रहे। एक बार उस आश्रम में कुछ राजकुमार फल फूल चुनने के लिए आए और जब बार चंद कौशिक को मालूम पड़ी तो वह एक फरसा लेकर जो तीक्ष्ण धार वाला फरसा था लेकर दौड़ता हुआ उस राजकुमार को मारने के लिए आया, तो राजकुमार तो भाग कर चले गए और वह चंद कौशिक एक गहरे गड्ढे में गिर गया और फरसे पर तेज धार थी उससे उसका सर छेदन हो गया। इस प्रकार वह मर गया और मर करके उसी आश्रम में ये सर रूप में पैदा हुआ। इतना इसको ज्ञान हुआ तो उसने सोचा कि मैंने क्रोध के कारण मैंने भव बिगाड़े, अब वह चंद कौशिक प्रतिबुद्ध हो गया था। उसने संकल्प लिया अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा और जीवन पर्यंत कोई भोजन पानी ग्रहण नहीं करूंगा। यह संकल्प करके अपने मुंह को बिंब के अंदर डाल दिया और पीछे के भाव को पूंछ को बाहर की तरफ तोड़ दिया। यह दृश्य जब गांव वालों ने वगैरह ने देखा कि चंद कौशिक जिसकी दृष्टि पड़ते ही लोग भस्मीभूत हो जाते हैं वह इस अवस्था में पहुंच गया, क्या मर गया है क्या, तो उस पर घी दूध वगैरह पूजा अर्चना की, उसे दूध घी से और दूध घी की सुगंध से सीटियां आई, सीटियों ने उसके शरीर को चलनी चलनी कर दिया। लगभग 15 दिन तक उसके शरीर को वह चंद कौशिक की यातना को सहन करता रहा और मरकर से आठवें देवलोक में पहुंचा। ऐसे थे पति पावन प्रभु महावीर। बंधुओं, हम प्रसंग से अपने आप को भी जोड़े कि एक क्रोध ने किस प्रकार उस जीव को चंद कौशिक के जीव को भटकाया। और वैसे देखा जाए तो क्रोध एक ऐसा तेजाब है जिस पात्र में रहता है उसी पात्र को जलाता है, वो तेजाब होता है वो तो दूसरों को जलाता है, लेकिन तेजाब ये क्रोध रूपी तेजाब स्वयं को ही जलाता है। तो बन सके उतना हम क्रोध को कम करने की चेष्टा करें और जैसे उपाय बहुत सारे हैं ये मुल्तान को छोड़ दे या जिस पर क्रोध करना उसी पर करे, कम से कम दूसरे पे तो नहीं करे, और जिस स्थान में किया उसी स्थान पर करे, दूसरे स्थान पर नहीं किए करें। मुंह में पानी भी रख सकते हो और बहुत बढ़िया उपाय है श्रेष्ठा ध्यान, श्रेष्ठा ध्यान के द्वारा हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने आप को रूपांतरित कर सकते हैं। आगे भगवान चंद कोशी का उतार कर उत्तर वाचाला पधारे, वहां नाम देख के सदन में 15 दिन की तपस्या का तीर से पारणाम किया और वहां से चेतावनी का से दूरी को जाते हुए गंगा नदी आई। गंगा को पार करने के लिए नौका पर भी आरूढ़ हुए और वहां पर नौका में एक देव ने भयंकर तूफान भी खड़ा किया और नौका को उलटने की भी कोशिश की, मगर नाग कुमार के देव के कंबल और संबल ने उस देव के प्रयत्न को असफल कर दिया। उधर गंगा का गंगा नदी पार करके भगवान दुमनाथ सन्निवेश पधारे और वहां पर ध्यानक हो गए। अब वहां पर एक पुष्प नाम का निमित्त के रहता था पुष्प, उसने भगवान के चरणों को देखा और उस चरणों का अध्ययन कर उसने जाना कि कौन हो हमारे इस क्षेत्र में कोई कोई चक्रवर्ती या कोई सम्राट आया हुआ है। तो उस चरणों को अनुसरण करते हुए वो वहां पर आया जहां भगवान सारणारूढ़ थे और भगवान को देखा एक सामान्य पुरुष ध्यान कर रहा है, कैसे ऐसे चक्रवर्ती के पांव हो सकते हैं, लगता है मेरे लिए शास्त्र है जो ज्योतिष विद्या के शास्त्र है वो झूठे हैं, अब मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए वो अपने सब शास्त्रों को इकट्ठा किया और वो गंगा नदी में बहाने के लिए उद्यत हुआ। तभी इंद्र ने कहा कि पंडित ऐसी भूल मत करना, तुम्हारे शास्त्र ठीक कह रहे हैं, इसमें से श्रद्धा मत दिलाओ, वस्तुतः यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह धर्म चक्रवर्ती है, यह देवेंद्रों और नरेंद्रों का भी पूजनीय है। इस प्रकार पुष्प बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान को वंदना की और वहां से भगवान राजगृह पधारे। वहां संतु वाचाला में साधु मां सीता ने और जो मंगली पुत्र गोचालक वो भी उसी संतु वाय में वहां पर साधु मां सीता रहा था, वो पहले से ऑलरेडी निश्चित था कोई दूसरे संप्रदाय का होगा। तो वहां पर तो भगवान ने वहां पर मान कमल किया तो देवों ने दुर्दुंदी बजाई और वहां पे पारणा भी किया। वो दृश्य देखकर मंगली पुत्र गोचालक बहुत प्रभावित हुआ और भगवान को कहा कि मुझे भी अपना शिष्य बना दो। भगवान ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके पश्चात भगवान ने और भी तपस्या की और देवों ने जो देव धुंधुवी और पंचदिव्य प्रकट किए उससे और प्रभावित हुआ और भगवान को और ये निवेदन किया तो भगवान ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वह भगवान के साथ में 6 वर्ष तक ध्यान करता रहा भगवान के साथ में। इस प्रकार गोचालक के साथ में भगवान के साथ में गोचालक ध्यान करते हुए चंपा पधारे। चंपा नगरी में वहां पर चोरों का और डाकुओं का अत्यंत भय और आतंक था। एक बार महावीर और गोचालक भी वहां से ध्यान कर रहे थे तो उनके कुछ लोगों के मन में पहरेदार जो थे उनके मन में संशय जागा और भगवान को पूछा तो भगवान ने अपना कोई परिचय दिया नहीं क्योंकि वो मौन रहते थे। इस पर पहरेदारों ने उनको पीटना शुरू कर दिया और उसी समय वहां पर ये प्रशिक्षण जयंती और वगैरह ये वहां पे रहने वाली तालिका थी जो उत्पल की निमित्त की बहने थी वो भगवान को पहचानती थी, उन्होंने भगवान का परिचय किया तो भगवान को ऐसे क्षमा था पहरेदारों ने भी क्षमा मांगी भगवान से और वहां से प्रश्न चंपा में विराज किया। वहां से भगवान कलम्बुआ पधारे और कलम्बुआ में अधिकारी मेघ और काल अस्थि जमींदार होते हुए भी आसपास के क्षेत्रों में चोरी का काम करते थे और वहां पर डाका भी डालते थे। तो भगवान महावीर मार्ग में मिले, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, महावीर ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने काल अस्थि ने उसे खूब पीटा और भगवान महावीर को बंदी बनाकर अपने बड़े भाई मेघ के पास लाए और मेघ उनको क्षत्रिय ग्राम में पहले देखा हुआ था मेघ ने तो मेघ ने उसने क्षमा याचना की और भगवान महावीर को मुक्त किया और वंदन भी किया। भगवान ने सोचा मेरे कर्म तो बहुत है और समय है बहुत कम तो मुझे अनाड़ी प्रदेश में जाना चाहिए वहां पर कर्मों की अतिरिक्त लेना होगी, तो भगवान नाड़ प्रदेश बनाए और वहां पर भगवान को कई कष्ट आए। वो कष्ट ऐसे हैं कि भगवान को ठहरने के अनुकूल आवास नहीं मिल पाता, दूर दूर तक उपलब्ध नहीं होने से भगवान को भयंकर अरण्य में ही ठहरना पड़ता, रूखा सूखा बासी भोजन मुश्किल से मिलता, कभी कभी गांव में पहुंचने से लोग उन्हें मारने लग जाते और उन्हें दूसरे गांव जाने को बाध्य कर देते, लोग उन पर विविध रूप से प्रहार करते जिससे उनका शरीर क्षत विक्षत हो जाता, उन्हें बार बार गेंद की तरह उछाला और पटका गया, कुत्ते महावीर को काटने दौड़ते तो लोग उन कुत्तों को रोकते नहीं और अधिकांश लोग भी ऐसे थे जो चू चू करके कुत्तों को बुलाते और काटने के लिए प्रेरित करते। इस प्रकार भगवान ने अनैय देव की यात्रा की और अपने कर्मों की निंदा करते हुए भतीला पधारी। बंधुओं, कर्म भगवान के हैं जैसे जैसे हमारे भी है, मगर हम उच्चार कितना करते हैं, रात में नए कर्मों का और जोड़ रहे हैं और बंधन कर रहे हैं, लेकिन कर्म काटने की विधा क्या हमने अपना ही है, क्या हमने कर्म निद्रा के जो भेद है उनकी क्या हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं? यदि नहीं करते हैं, हम उनको अपनाएं और अपने जो मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य भव मिला है, बहुत कीमती है, भगवान ने देता नहीं है, हम कुछ पुरुषार्थ करें, कई कुछ नहीं तो कम से कम नए कर्म तो एक नहीं हो, फिर जैसे पोजिशन में रहे, बैलेंस शीट तो बराबर रखे, ये प्रयत्न तो करे, ये प्रयत्न हम मनुष्य भव में कर सकते हैं और जो कृत कर्म है उनकी भी निष्ठा हम मनुष्य भव में कर सकते हैं। भगवान बांध वेशा बांध वेशाली की ओर विहार किया, गोचालक की साधनी ही था, तो भगवान ने भगवान को उसने कहा गोचालक ने आपके साथ में रहता हूं तो कभी चोर समझा जाता है, कभी पिटाई होती है, आहार पानी मिलता नहीं है, इस प्रकार के कष्ट मुझे नहीं सहन करने, मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। तो वो अकेला ही विहार करने लगा और ऐसा फसल और राजगृह की ओर चला गया और वैशाली में राहुल कर्मशाला में अनुमति लेकर भगवान धाना दूर हो गए। कर्मशाला का एक कर्म का लुहार जो पिछले 6 महीनों से उसे वहां काम करने के लिए नहीं आया था, कोई बीमारी होगी तो आया नहीं, तो 6 महीने के पश्चात वहां पर आया, शुभ दिन लेकर आया और वहां पर देखा कि एक मां कोई वस्त्र नहीं कुछ नहीं, और साधु एक वहां पर ये ध्यान कर रहा है, उसने उसको अपना अशुभ माना, तो ये कौन सा साधारण सा आदमी है, तो वो हथौड़ा लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ा था, उसका हाथ नहीं कर स्तंभित हो गए। इस प्रकार भगवान वहां पर उसका प्रहार विफल हो गया और वहां से विहार कर ग्राम सन्निवेश में विवेचक व्यक्ति के स्थान में भगवान धानारूढ़ हो गए और वहां से भगवान शालीसीट के रमणीय उद्यान में पधारे। वहां कच कुटना नाम की जो एक व्यंतर देवी थी उसने भगवान को कई कष्ट दिए और फिर 6 महीने इधर उधर भटक कर गोचालक भी भगवान के पास में वापस आ गया और साथ साथ में भगवान से विहार कर रहा। भगवान 8वें वर्ष में राजगृही पधारे और राजगृही का ये संपन्न कर चातुर्मास संपन्न किया और फिर वन पुनः अनार्य भूमि में पधारे और कर्मों की निद्रा की और अनार्य भूमि में चातुर्मास भी किया, मगर चलते फिरते कोई रहने के लिए स्थान नहीं था, चलते फिरते भी भगवान ने चातुर्मास किया। इस प्रकार भगवान के 9 वर्ष पूरे होते हैं और 10वें वर्ष में भगवान अनार्य भूमि में आर्य भूमि में पधारे। गोचालक भी साथी था तो गोचालक एक रास्ते से ज्ञान हो रहा था तो रास्ते में 7 फुट वाला एक तिल का पौधा, उसको देखकर भगवान को गोचालक ने पूछा कि भगवान ये पौधा फलयुक्त होगा? तो भगवान ने कहा हाँ यह फल देगा और इसकी एक फली में 7 जीव होंगे अथवा 7 दाने होंगे। तो गोचालक ने भगवान के इस कथन को मिथ्या साबित करने के लिए उस पौधे को जड़ से उगाड़ दिया और वहीं पे डाल दिया। अब कालांतर में वहां बारिश हुई और उनमें मिट्टी भी आ गई तो वह पौधा वापस पैदा हो गया और संयोग वर्ष को कुछ समय के बाद में कुछ दिनों के बाद में भगवान वहीं से गुजर रहे थे तो गोचालक ने पूछा कि प्रभु वो तिल का पौधा क्या पैदा हुआ क्या? वो जानता था मैंने पौधा तोड़ दिया है, लेकिन भगवान ने कहा तूने जिस तिल के पौधे को उखाड़ा था वह वहीं पुनः उग गया है। गोचालक को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। तो उसने उस एक फली को तोड़ी और फली को तोड़ा और उसने से देखा सात दाने। भगवान ने कहे कि सात जीव होंगे, सात दाने अंदर है, सात जीव है। इससे उसका विश्वास ये दृढ़ हो गया कि जो जीव जैसा होता है वैसा ही उत्पन्न होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार वह नियति वाद का पूर्ण समर्थक हो गया। वहां से भगवान निहार कर कूर्म ग्राम पधारे और कूर्म ग्राम के बाहर ही एक वैशायन नाम का ऋषि जो छटाधारी था वह धूप में सूर्य के सामने धूप में तपस्या कर रहा था। तो अपनी छटाओं को अपने मुंह के सामने डाले हुए था और उसमें जो जुएं थी वो नीचे पड़ गई थी और वो वैशायन ऋषि उस जुओं को वापस लेकर अपने बालों में वापस रख रहा था। यह दृश्य जब गोचालक ने देखा तो कहा अरे ऋषि तू सन्यासी है जो जुओं का सैयादर है। एक बात उसने कहा, लेकिन बार बार जब ये बात कही तो उस वैशायन ऋषि ने उस गोचालक की तरफ तेजो लेकर छोड़ दी, आपके बबूले आपके बोले गोचालक की तरफ आने लगे। गोचालक तो घबरा गया और भगवान के चरणों में जा चुका। भगवान ने देखा कि तेजो लेखा का प्रयोग किया गया है, भगवान ने ही कीर्तन लेखा का प्रयोग किया तो तेजो लेखा खत्म हो गई। और वो वैशायन ऋषि ने वो भी समझ गया कि भगवान के पास ऐसा कुछ ज्ञान है और ये कीर्तन लेखा है जिसके कारण ही ये तेजो लेखा समाप्त हुई है। तो भगवान के वो भी क्षमा याचना करने लगा। बंधुओं प्रश्न यही खड़ा होता है क्या भगवान ने गोचालक को बचाया, क्या जीव को बचाना धर्म है? क्या है? वही हम साधना काल के पंद्रवा वर्ष आएगा तब हम जानेंगे। या मैं ही बता देता हूं कि जब भगवान ये वास्तविवासी में गोचालक रहेगा तो श्रीवास्तव श्रीवासी में वही रहता था तो भगवान भी श्रीवासी बता दे। और तब इसमें गोचालक ने ये तेजो लेखा आदि और निमित्त अष्टांग निमित्त का ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो वो अपने आप को सर्वज्ञ समझता था, जिन समझता था, तीर्थंकर समझता था, केवली समझता था और पूरे एरिया में उसने यही भवन दर्श और यही मतलब प्रचार प्रसार कर दिया कि मैं तीर्थंकर हूँ, सर्वज्ञ हूँ। और भगवान जब पधारे वहां पर तो एक बार गौतम स्वामी भोजन के लिए पधारे, गांव में पधारे तो उन्होंने लोगों से सुना इस श्रीवास में दो तीर्थंकर है, दो सर्वज्ञ है, ऐसा कैसे हो सकता है? तीर्थंकर तीर्थंकर मिलते नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गौतम ने भगवान से कहा कि ऐसी ऐसी बात जल चर्चा में है कि यह दो सर्वज्ञ है, क्योंकि गौतम और गोचालक का मिलना नहीं हुआ था। वो तो बाद में गंधर्व बने थे, बाद में दीक्षित हुए थे और गोचालक उसके पहले था। तो भगवान ने कहा कि आज से 24 साल पहले यह गोचालक मेरा शिष्य था और 6 साल मेरे साथ में रहा और इसको तेजो लेखा का ज्ञान मैंने दिया है और इसके साथ साथ में उसके अष्टांग निमित्त उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया और यह अपने आप को सर्वज्ञ कह रहा है और तीर्थंकर कह रहा है। यह बात गौतम स्वामी और दूसरे साथी संतों गांव में जब प्रचारित हुई तो गोचालक ने यह बात सुनी तो उसे बहुत क्रोधित था, क्रोध आया। और एक बार आनंद नाम का एक साधु अपने पालने के लिए श्रीवासी के नगर में गया था तो गोष्ठी करते हुए गोचालक सामने मिल गया तो उसने कहा, चेतावनी देते हुए कहा कि सुनो देवानुप्रिय, तुम जाकर भगवान महावीर से कह देना कि मेरे लिए कोई अंत संत प्रचार नहीं करे, मैं सर्वज्ञ हूं। तो वह और अगर ऐसा किया तो मैं तेजो लेखा से भगवान को भस्म कर दूंगा, महावीर को भस्म कर दूंगा। ये बहुत डर गया आनंद नाम का मुनि था, वो डर गया और वो आया भगवान के पास कि गोचालक मिला और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि मुझे तो तीर्थंकर को कुछ इस तेजो लेखा से होने वाला नहीं है, मगर तुम साधु सब साधुओं को सूचित कर दो कि कोई भी गोचालक आ रहा है यहां पर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे उसके सामने नहीं जाए। भगवान के पास गोशा लगाया और आते ही उसने कहा आप मेरे लिए ऐसा ऐसा प्रचार क्यों कर रहे, मैं सर्वज्ञ हूं और मैं मंगली पुत्र नहीं हूं, मंगली पुत्र कब का गोशाला कब का मर गया, मैं तो उसके शरीर में प्रविष्ट आत्मा हूं और मैंने ये शरीर का रूपांतर 7 बार कर लिया है और मैं वो नहीं, मैं सर्वज्ञ हूं। लेकिन उसको समझाने के लिए सर्वानुभूति नाम के मुनि उसको बीच बचाव में आए कि तुम ऐसा संभाषण मत करो, झूठा प्रचार प्रसार मत करो, तो तेजो देशा का प्रयोग कर उस सर्वानुभूति को वहां पर चला दिया भगवान के सामने। और फिर बाद में वो भगवान को गालियां देने लगा तो एक सुनक्षत्र नाम के मुनि ने उस गोशालक को कहा कि तुम इस तरह मत बोलो, गालियां मत बोलो, कुछ हित वचन बोलो, शुभ वचन बोलो। तो उसको भी तेजो देशा से उसको भस्म कर दिया। एक तरफ गोशालक को भगवान ने बचाया, एक तरफ भगवान के सामने दो साधु उनके सामने चला दिया। धर्म किसमें है, मेरा प्रश्न आपसे यही है, धर्म किसमें है, जीव को बचाने में है या किसमें है, नहीं मानने में, जीव को नहीं मानने में धर्म है। आप बचाओगे, एक चीटी जा रही है, बचा लिया, इधर से इधर रख दिया, लेकिन आप कहां तक उस चीटी को बचाते जाओगे। हम ये संकल्प करें, जीव कहा भी गया है क्या धर्म हो गधर्म, अहिंसा धर्म हिंसा धर्म, यहां पर ये दोनों प्रयोग भगवान के सामने यहां उपस्थित हुए। दोनों भगवान, दोनों साइड में भगवान थे, एक तरफ गोशालक को बचाया और एक तरफ दोनों संत काल कलंक कवलित हो गए। मगर भगवान ने तब वो भगवान छठमस्त थे, यहां पर छठमस्त थे, वहां केवली थे। भगवान जानते थे कि उनकी मौत होने वाली है, तेजो देशा के होने का होने वाली है, फिर भी भगवान ने नहीं बताया, उनका आयुष्य ऐसा ही था, होने वाला ही था। तो जीवे थे दया नहीं, मरे थे हिंसा नहीं जान, मारण वाला ने हिंसा करी, नहीं मारे थे दया गुण खान। और यहीं पर भीकर जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि छा होती जब वीर में होता आठवीं कर्म वीर चूतिया तीन समय मूर्ख छापे धर्म। ये इसके यही कारण है, यहाँ चटमस होते हुए भी चटमस से फिर भी 3 ज्ञान थे भगवान के पास, फिर भी गोचाल को इसी वर्ष एक वर्ष यहां पर बचाया और वहां पर नहीं बचाया। तो गोशालक को बचाया तो गोशालक को लगा ये तो बहुत अच्छी कला है, विद्या है, मुझे भी सीखनी चाहिए। तो भगवान को निवेदन किया मुझे भी तेरे लेता ये सिखाओ। तो भगवान ने उसको विधि बता दी। तो भगवान द्वारा विधि गई बताई गई विधि के अनुसार 6 मास तक तप आयंगी एवं आराधना करके गोशालक ने तेजो देता प्राप्त कर ली। प्रथम परिश्रम के रूप में उसने कुएं पर पानी भरती हुई एक लाठी पर प्रयोग किया। तेजो दीक्षा प्राप्त होने के बाद गोशालक ने 6 दीक्षाचरों में निमित्त शास्त्र पढ़ा, जिसमें वह सुख दुख लाभ हानि जीवन और मरण इन 6 बातों से सिद्ध हस्त हो गया। तेजो दीक्षा और निमित्त की ज्ञान जैसी असाधारण शक्तियों से गोशालक का प्रभाव बढ़ गया और उसके अनुयायी बढ़ने लगे, अनुयायी भी बढ़ने लगे और एक समय ऐसा आया भगवान से ज्यादा भी अनुयायी इस गोशालक से हुए। वह आजीव संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य बन गया उधर, और वो अलग ही विवाह करने लगा। उधर भगवान वैशाली पधारे और भगवान बालक उन्हें दिशा समझ कर सताते तो कोई उन्हें बचा भी लेता, जो परिचय वाला था वो उन्हें बचा भी लेता। उधर वाणिज्य ग्राम में आनंद नाम का एक श्रावक था, जो प्रमुख श्रावक जो 10 श्रावक है वो नहीं, वो दूसरा था। उसने कहा कि हे भगवान, अब आपको शीघ्र ही केवल ज्ञान होने वाला। उधर भगवान ने ये इतने कष्ट सहन कर रहे हैं, समतामय जीवन है। उधर इंद्र भगवान की प्रशंसा कर रहा है कि हमारे इसमें रणभूमि में भगवान ये तपस्या कर रहे हैं। इंद्र ने अपने अग्नि ज्ञान से भगवान को देखा और उनके ध्यान तपस्या साधना की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान महावीर का धैर्य और साहस इतना गजब का है कि मानव तो क्या, हम देवता भी उन्हें विचलित नहीं कर सकते। यह कहा सब देवों ने मान्य कर दिया, मगर एक संगम नाम का देव उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे 6 महीने का समय दे, मैं भगवान को विचलित करके छोड़ूंगा। अब इंद्र नहीं चाहता था कि भगवान को अतिरिक्त कष्ट हो, मगर इंद्र मना भी नहीं कर सकता, कैसे मना कर दे, तो संगम को उन्होंने अनुमति दी और भगवान को एक ही रात्रि में इस मरणांतिक कष्ट दिए। मगर भगवान का तो वज्र जैसा कठोर शरीर था, उस पर उनका कोई असर नहीं हुआ। तो इतनी मैं देर में नहीं जाऊंगा, आगे भी लंबा चलाना है। तो इस प्रकार इस कष्टों से उसमें कई कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। उधर फिर संगम उनके साथ साथ ही था, तो चोरी करने का काम करने बैंड मारता घरों में, और वो सामान जो भी होता वो भगवान के पास में रख छोड़ता, तो चोर समझ कर लोग उन्हें मारते। एक बार तो तोसिल ग्राम में चोरी करके आया और सैन लगाने के उपकरण थे वो भी भगवान के पास में छोड़ दिया। तो उनको जब पकड़ने के लिए आए तो सुखा चोर समझकर उनको पकड़ लिया और उनको फांसी पर चढ़ा दिया, भगवान को फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी का फंदा सात बार टूट गया, तो सब देखकर आश्चर्य हुआ और भगवान के शरणों में गिर पड़े। इतना सब कष्ट संगम ने दिया। तो इंद्र ने अपनी सभा में जो भी नाटक नृत्य आदि होते थे वो सब महीने तक सब बंद करवा दिया था कि भगवान पर कष्ट आए और इंद्र इतना अमोद प्रमोद में रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक दिन संगम ने भगवान से कहा कि हे भगवान, हे महावीर, मैंने तुम्हारे को इतने कष्ट दिए, बताइए मैं तुम्हें कैसा लगा। तो भगवान ने कहा कि कोई व्यापारी एक विदेश में व्यापार करता है और उसे घर से बुलावा आ जाता है, तुम अमुक काम है जल्दी आ जाओ, और उसके दुकान में सामान स्टॉक भरा पड़ा है, और कोई दलाल ये आकर ये कहे कि तुम्हारा पूरा का पूरा माल मैं सवाए दाम में बिकवा देता हूं, तो वो दलाल कैसा लगेगा। भगवान ने संगम को पूछा तो संगम ने जवाब दिया कि अगर वो सब माल बिकवा देता है, सवाए दाम पर बिकवा देता है, तो वो तो बहुत अच्छा लगेगा, क्यों सही को तो वो अच्छा ही लगना है। तो भगवान ने कहा कि संगम, मुझे भी तुम दलाल जैसे ही लगे, मेरे कर्म बहुत बाकी है और मुझे जल्दी मोक्ष आना है, तो तुम मुझे मोक्ष के लिए निमित्त बने हो, इसलिए तुम भी उस दलाल जैसे हो। यह बात सुनी और वह संगम तो लाल पीला हो गया, और जिस प्रकार धोबी की कपड़ों को पछाड़ता है, जैसे भगवान के चरणों को पकड़कर भगवान को पछाड़ने के लिए उच्चित हुआ, तभी इंद्र प्रकट हुआ और कहा कि हे मूर्ख, देव छह महीने जीत गए हैं, छह महीने का सूर्योदय भी हो गया है। तब संगम ने भगवान महावीर को वहां पर छोड़ा और इस प्रकार भगवान महावीर ने छह महीने तक अपने समता भाव से सब कुछ सहन किया और छह महीने की अवधि पूरी की। जीत में कहा भी गया है, संगम ने किला पर प्रभु को पचारा, व्याघ्रोर बाघों के भय से लतारा, भय से लतारा, फिर भी न गुस्सा किया, तमता की धीर था, नाम महावीर था जी, नाम महावीर था, नाम महावीर था जी, नाम महावीर। तो भगवान वहां से रिहा कर वैशाली में पधारे, वैशाली में चातुर्मास किया और निरंतर तपस्याएं कर रहे हैं। उधर वैशाली का रहने वाला जीर्ण सेठ, जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे लोग जीर्ण सेठ कहते थे, नाम था जीर्ण दत्त, वह भगवान को रोज भावना पाता है, आप भोजन के लिए मेरे घर पधारो, कि भगवान की तपस्या थी। इस प्रकार भगवान ने वहां पर पधारे, तो अपना तपस्या पूर्ण कर जब शिक्षा के लिए निकले तो पूरण सेठ ने दासी को कहकर दान दिलवाया। तो दान दिया, देवों ने पंचदिव्य प्रकट किए, देव धुंधुमी भी बची और भगवान का पाना तो हो गया। तो लोगों ने भगवान से पूछा कि भगवान बताइए महादानी कौन थे। तो भगवान ने कहा कि महादानी जीर्ण सेठ थे, पाना किया है पूर्ण सेठ के यहाँ, और महादानी है जीर्ण सेठ, वह बारह व्रत की भावना पाता था। हम भी प्रेरणा ले, साधु साधी भावना भाते हैं, पदार्थ हैं, अच्छी बात है, हम उनके संयम में सहयोगी बनते हैं, यदि नहीं भी है हम भोजन करते समय नौका मंत्र के साथ में 12 व्रत की भावना भाई, जिससे हमारे कर्ण निद्रा भी होती है और हमारे उच्च गोत्र भी बनते हैं। और कहते हैं कि उस समय 12 देव उठे जीर्ण देव ने इस प्रकार की भावना भाते हुए 12 देवलोक का आयुष का बंद कर दिया। और जब देव जिंदगी नहीं बनती तो हो सकता है उसको केवल ज्ञान भी हो जाता, इतने उच्चे उच्चे भाव हो गए थे। इस प्रकार भगवान वहां से व्यास करके कौशाम्बी पधारते हैं और कौशाम्बी में भगवान तपस्या करके 13 बोलों का अभिग्रह ग्रहण करते हैं। और भगवान रोज घर घर दीक्षा के लिए घूम रहे हैं, मगर कहीं भी 13 बोलों का योग मिलता नहीं है। तो वह 13 जो बोल है वो है कि राजकन्या हो, बाजार में बिकी हुई हो, सिर मुंडित हो, सिर में छाव हो, हाथों में हथकड़ी हो, पैरों में एड़ी हो, 3 दिन की भूखी हो, भौंरे अर्थात तल घर में हो, आधा दिन बीत जाने के बाद हो, 1 पैर दहलीज में 1 पैर दहलीज के बाद अंदर हो, सूप के कोने में उड़द के बाफले हो और आंखों में आंसू हो। इस प्रकार के 13 बोल भगवान ने लिए हैं और कौशाम्बी में घर घर भिक्षाटन कर रहे हैं। और उधर चंपा नंदी और ये एक आख्यान है जो मुनि सागर मंदिर समन द्वारा रचित है, ये रोचक है। तो आप फलक में शॉर्ट में भी कर सकता हूँ और थोड़ा गीतिका का सहारा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है समझ। उधर चंपा नगरी का भी वर्णन है
रोज घोषणी की बेला में मोहले मोहले फिरते, कभी किसी की भी कोई मनुहारन दीपत करते, रुकते मुड़ते फिर तल पड़ते, रुकते मुड़ते फिर तल पड़ते, अनमोले महावीर घूमते अनबोले महावीर घूमते अनबोले महावीर।
इस प्रकार गोत्री के लिए भगवान घर घर भिक्षाटन के लिए घूम रहे हैं। उधर चंपा नगरी का वर्णन है कि जो मतलब वैभव से परिपूर्ण है, धन बल जन बल धर्म बल और सुख शांति से समृद्ध है, और जहाँ का राजा है दधिवाहन जिसकी पत्नी का नाम है थारिणी और उसकी पुत्री वसुमती जिसको चंदन माला भी कहते हैं, रूप रावण्य से भरपूर विनयशील संसारशील विवेकशील थी। एक बार छोटे छोटे उसने स्वप्न देखा, स्वप्न क्या था कि माता जी मैंने क्या सपना देखा, अम्मा जी मैंने क्या सपना देखा, सपने में देखा शहर में मच से कह रही है कि किसी ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है, और हमारी चंपा नदी तहस नहस हो गई है और इसको लूट बांट हो रही है। तो वह धारिणी अपनी बेटी को धैर्य बंधाती है और कहती है कि इस प्रकार सपने सपनों को देखकर अपने आप को अधीर मत बनाओ, सपने कहां तो सच हो जाते हैं। इस प्रकार धैर्य बंधाकर वह सो गए और कहा आज तक ध्यान मत करना तुम। और उधर प्रातःकाल होने जो ही होने की है और रानी उठती है तो रणभेरी की आवाज सुनाई देती है। तो रानी सोचती है कि ये सपना साकार हो गया, लगता है सपना फलीभूत हो गया। और कैसा समय है जब दधिवाहन अपने मित्र नरेश मदनक की सहायता के लिए यहाँ से बाहर सेना लेकर गए हुए, कैसा समय उत्थल कपटी ने सोच कुछ देखा नहीं हमारे को कोई सूचना भेजी हो, इस प्रकार रात्रि में कोई आक्रमण नहीं करता है, युद्ध नीति को भी विसार दिया है भूल दिया है फिर भी यहाँ पर आक्रमण किया है। इस प्रकार वो जैसे ही सोच रही और अपने बेटी को भी सांत्वना दे रही है कि यदि कुछ भी ऐसी ऐसी अनहोनी घटना भी बन जाए तो अपनी शील की रक्षा करना, शील को कभी मत गंवाना, सबसे ऊंचा है हमारा शील। बेटी को शिक्षा दे रही है तभी एक अंग नगर रक्षक दौड़ता हुआ हाँपता हुआ आता है और कहता है कि हे रानी हमारे नगर पर आक्रमण हो गया है और नगर सेवक जो भी थे वो काम आ गए हैं, मर चुके हैं और हमारी सेना भी बाहर गई हुई है। इस प्रकार हमारे चंपा नगरी को तहस नहस कर दिया है और यह काम किया है चटानिक ने और उसकी सेना लूट पाट कर रही है। सैनिकों को क्या चाहिए, जो आए तो लूटो, धन मान वैभव जो भी था वो लूट कर लेकर जाने लगे, जो भी रत्नों की राशि थी धन आदि था और उसका एक सेनापति था पाप मुंह, उसको इन धन मान से कुछ लेना देना नहीं था। वह सीधा पहुंचा राजमहल में रानी के कक्ष में और उस धारिणी ने प्रतिरोध भी किया कि तुम आगे मत बढ़ना, तुम ठहर जाओ, मगर वह कहां रुकने वाला था। वो पहले से ही उस धारिणी को पाप मुक्त चाहता था मगर वह दधिवान की रानी होने के का हो गई और उसको पा नहीं सका तो वो उसे पाना तो चाहता ही था। यह सोचकर उसने उस धारिणी और चंद्रमाला को दोनों को अपने रथ में बिठाया और सब सैनिक को जाने पहुंचा की ओर वो गया जंगल की ओर और एक घने जंगल में पहुंचा और वह घने जंगल में पा रथ को रोका और धारिणी को कह रहा कि आओ हम अपनी काम पिपाशा शांत करें, राग रंग में रंग जाए। तो वो क्या नाम धारिणी बहुत ही इनकार करती है और कहती है कि तुम आगे मत बढ़ना, खबरदार जो हाथ लगाया यह तन तुम्हें न मिल सकता, नेहरू कभी न हिल सकता, पूरे में कमल न खिल सकता, देख अभी दिखलाती हूँ रजपूती कह रानी दहारे, जीव खींच ली रहा पति रहा रति भौचक का था आंखें पारे। तुम आगे मत बढ़ना नहीं तो अनहोनी हो जाएगी। और इस प्रकार कहकर जब जो ही वो कामुक था और कामुक आदमी किसका रुकने वाला था, कुछ होने वाला नहीं है नहीं था, वह आगे बढ़ा तो उस धारिणी रानी ने अपनी जीप खींच ली और वही सड़क पर अपनी जान दे ली। और चंदन बाला तो अकेली रह गई, वह विलाप कर रही है अपनी माँ की सबसे निपट कर, वह कह रही है कि मां मरने से पहले मुझे मार देना था, बेटी की ममता को निसार देना था, आखिरकार इस कसाई से ही जोर जाओगी, ए मायह न तो नहीं जानी थी तुम चोर जाओगी। ये माँ मैंने ऐसा तो नहीं समझा था कि इस काल में भी मुझे अकेली छोड़ कर चली जाओगी, अब मेरा सहारा कौन है। इस प्रकार वह विलाप कर रही है और वह कामुक जो काम मुख था उसका भी जो कामांड था उसका भी नशा नीचे उठा और वह बोला मत तुम डरो भूलती मेरी साई आंखों में अंधेरी, दोनों ने मृतिका जलाई तेरित देवर चंदन आई। उसने कहा चंदन बाला को कि जो भी पाप हुआ है उसका भागीदार मैं हूँ लेकिन मुझे क्षमा कर दो बेटी। एक ही कहा तो वह कुछ आश्वस्त हुई कि नहीं उसके मन में भी कुछ संसार जैसे तेज है। तो दोनों ने मिलकर धारिणी की चिता जलाई और उधर कौशाम्बी में रति उस काफ मुख की पत्नी कब से इंतजार कर रही थी कि इतने सैनिक आ गए हैं, कोई धन लाया है, कोई माल लाया है, कोई रत्नों की राशि लाया है, कोई चड्डा लाया है, कोई क्या नौसर हार लाया है, तो मेरे जो पतिदेव है वो तो सेनापति है, वो तो बहुत बड़ी राशि लाने वाले हैं, आज हम निहाल हो जाएंगे, इतने दिनों से दुख देख रहे थे, आज हम निहाल ही निहाल हो जाएंगे। तो वह बोलती है कि क्या लाए, कि क्या लाए, आप लूट कर क्या लाए। तो वह कहता है कि रथ का दरवाजा खोलो, उसमें देखो कौन है। तो जैसे ही उसने देखा, उसकी पत्नी ने, और देखा कि एक युवती जो अंदर बैठी हुई है, तो उसने कहा तुम सोचना ही मत मैं इसको घर में घर के मैं दहलीज में पांव ही रखने ही दूंगी, रखने दूंगी। तुमने क्या सोचा है, क्या सोचकर ये इसको लेकर आए हो? सब लोग का घर देवर धन देखो देखे आए, तुम इसको लेकर आए हो, इसको मैं नहीं रहने दूंगी। तुम क्या समझते हो, इसके साथ मैं भी जान दे दूंगी और इसको भी मार दूंगी, और यही नहीं मैं सड़क पर जाकर चिल्लाऊंगी और तुम्हारे इज्जत की मट्टी पलीद कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे को भी कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। तो तुम मैं इसको रहने नहीं दूंगी। तो उसने कहा तुम माफ कर दो, आज के दिन हमारे को रहने दो, कल सुबह इसको बाजार में मैं बेच दूंगा। और जैसे ही सुबह हुई उसको लेकर वह काम उसको लेकर बाजार में गया और बोलियां बोलने लगी, तोड़े में बोलने गोली बोलने लगी। और एक वेश्या देव उसने देखा बहुत सुकुमारी है, कोमल है, युवती है, उसने 5000 दिनार देकर उसको खरीद लिया। तो चंदन बाला ने उस वेश्या को पूछा कि आप मुझे लेके जा रही है लेकिन काम क्या करना पड़ेगा? तो उसने कहा कि काम कुछ भी नहीं, खाओ पियो सही श्रृंगार से, नागरिक जल को ले जाओ कला के अधिकार से, काम कुछ भी नहीं करना है, लोग जो आते हैं उनको ले जाओ और उनका मनोरंजन करो। उसने सोचा यहां मेरे जीव की रक्षा होने वाली नहीं है, मैं इसके साथ में जाने वाली नहीं हूं। और यह दृश्य जब खींचा था, जब दूसरे लोगों ने देखी कि उसमें एक धनावा नाम का शेर था, तो उसने सोचा कोई सभ्रांत महिला है, सभ्रांत युवती है, इसे बचाना चाहिए। तो जो वेश्या ने दी हुई थी 5000 दिनार वो उसको दे दी और उसको बचा लिया, अपने गांव घर पे लेकर आ गया। फिर भी चंदन बाला ने पूछा कि मुझे आपके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि कुछ नहीं करना है, मेरे यहाँ पे धर्म ध्यान करो, घर का काम करो, मुझे पिता समझना और मुला को माँ समझना और धर्म ध्यान करना। ये वो आ गई। उधर मुला ने देखा कि ये भी किसको लेके आए युवती को, तो वो कह रही है कहाँ से लाए हो मेरे सिर पर शोक, कब से आया आप पर इस अलका का लो। और आगे कह रही है मौत पर आई देती है पजों पानी में जो, बुढ़े होने को चले हो नया सजा का शोक, कहाँ से लाए हो मेरे सिर पर तो। वह कह रही है कि तुम भी बाजार से युक्ति लेकर आ गए, क्या मेरे लिए कोई स्वतन लाए हो क्या? तो उसने शेर ने समझाया कि ये स्वतन नहीं है, अपनी बेटी है, तुम बेटी समझकर रखना। और इसने घर में लेकिन वो मूला तो संदेह से भरी हुई थी, कैसे घर में रखती। तो एक दिन शेर भी गई, दूसरे गांव में गए और दिन में वापस आए मध्यान्ह में, तो थके हुए थे, तो गर्म पानी से चंदन बाला पांव धो रही है, तो उसके कुछ केश राखी मुंह पर तेरह पर लटक आई। तो उन केशों को शेर जी ने अतिरिक्त कोई भाव नहीं थे, उन्मुक्त भावों से उन केशों को ऊपर रख दिया। और यह दृश्य जब मूला ने देखा तो उसका संदेह तो शब्द जो था वो पुष्ट हो गया कि बोल हो इन दोनों में कुछ न कुछ ऐसा वैसा संबंध है, तो इसका बदला मुझे देना है। तो एक बार से 3 दिन के लिए कहीं दूसरे गांव में चले गए और देखा मूला ने ये अच्छा मौका आया है, अब मुझे इसका बदला ले लेना चाहिए। तो मूला ने उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई, पांव में घेड़ी पहनाई, सिर को मुंडन किया, घा भी लगा दिया और उसको भूग्रह में ले जाकर تالا بندی کر کے خود پیا جا کے چلی گئی اور سب داتے دار چاہتے وہ چھٹی دے دی. اور جب تین دن کے بعد میں پیٹ بھی واپس آئے تو گھر پہ تالا تو گھر تو گھر کا مولا ہے تو اس کے پیر جا سکتی ہے چندن والا کہاں جائے گی. تو انہوں نے آواز دی چندنا او چندنا تو ایک آواز آئی بھیتر سے پتا جی میں یہاں ہوں. تو وہ آواز کی دشا میں دیکھا وہ تل گھر میں تالا کھولا تو دیکھا اس کے ہاتھوں میں ہتھ گڑی اور پیروں میں بیڑی ہے. تو چندن والا نے اور کچھ نہیں کہا پتا جی جو ہوا وہ میرا بھاگیہ تھا میرا کرم تھا جو ہوا وہ کہ مولا کہاں ہے کہ مولا بھی کہاں ہے وہ کہ ماں کہاں ہے وہ میرے کو معلوم نہیں. مجھے بہت بھوک لگی ہے پہلے کھانے کے لیے کچھ تو دیکھا ادھر ادھر کچھ چھوڑ کے تو بھی نہیں تھی. وہ ایک کونے میں روپ میں اڑد کے بافلے پڑے تھے تو وہ بافلے اڑد کے بافلے چندن بالا کو لے کر اور وہ شیر کہہ رہا ہے کہ میں کسی سنار کو یا لوہار کو بلا کے لاتا ہوں تب تک تم ہی بافلوں کو کھاؤ. ادھر بھگوان مہاویر روز کے ڈوم میں آج پانچ مہینے اور پچیس دن ہو گئے ہیں روز گوشتی کے لیے بہار کر رہے ہیں تو چندن کے دوار پر بھی بھگوان بتاتے ہیں آئے ہیں آئے مہاویر پھرتے پھرتے چندنا کے دوار پر ہرنے کو بھو بھو کی مہاویر چندنا کے دوار پر. بھگوان وہاں پر پدارے اور اپنے گیان سے دیکھا بارہ بول مل رہے ہیں مگر سیوا بول نہیں مل رہا ہے. تو بھگوان وہاں سے واپس مڑ گئے. اب وہ چندن والا سوچ رہی میں اپنے کرموں کو دوش دیتی ہوئی آنسو کی دھار بہن تھی کہ جیتے مجھے جس کا سہارا تھا آج وہ بھی میرے دوار پر آ کر چلے گئے. میں راج کنیا تھی میری ماں سے ایک اس طرح سے موت ہو گئی میں بازار میں بکی نانا طرح سے کشت تھے اور مجھے ہتھ کڑی اور بیڑی بھی پہنائی گئی. مجھے یہ چوکا پانی کرنا پڑا پوتا پوچھا پانی کرنا پڑا تو وہ بھی کیا لیکن آج میرے دوار سے بھگوان جس کا ہی مجھے سہارا تھا آج وہ بھی مجھے چور پر چلے گئے میرے دوار پر آ کر واپس چلے گئے. اس کا ملاپ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے آؤ لوٹ کے آؤ مہاویر تمہیں چندنا بھلا کی ہے مت جاؤ جوڑ بھی مت جاؤ جوڑ بھی تمہیں چندنا بھلا دوویدھا کی ماری میں دکھی آری دنیا ہماری ناری جب نے دکاری مانا بھکاری پر کی دیا کے دیواری یہ انتت کی چوٹ مہاری تمہیں چندنا بلاتی ہے. بھگوان سے وہ پرارتھنا کر رہی ہے پنہ پنہ یہی پرارتھنا کر رہی ہے کہ ہے بھگوان آپ میرے دوار پر آئے ہوئے کیوں گے آپ پنہ پڑا ہو اور جیت میں کھان جا رہے سر مدا یہ چندن تیری راہوں میں کب سے کھڑی تھی پر نہیں تھے آنسو اس کے پاؤں میں میری کھڑی تھی ہنسون کی دھار بہی تب گر آئے ہو میرے مہاویرا کہاں تجھے پائے ہو میرے مہاویرا. تو بھگوان نے اپنے جان سے دیکھا کہ اب تیرا ہی بول مل رہے ہیں. تو بھگوان پنہ پدارے اور अपने कर में उड़द के बांकड़े लेकर पारणा किया। इस प्रकार देवों ने धुंध भी बजाई, अहो दानम की ध्वनि की और धनिवाहन की जय, चंदन बाला की जय, भगवान महावीर की जय, माता धारिणी की जय, जय जयकार कर रहे हैं। इस प्रकार जय जयकार कर रहे हैं और यही चंदन बाला आगे चलकर भगवान महावीर के शासन में प्रथम शादी होगी और प्रथम शादी प्रमुखा भी बनेगी। तो यह है चंदन बाला का वृतांत कि धन्य धन्य है महावीर की तप साधना क्षमता को और अधिग्रह हद लफदार चंदनाशी की क्षमता को सागर स्थान स्थान पर जनता बोध रही की स्वर लय में महावीर की जय हो जय हो चंदन बाला जय हो जय। चंदन बाला का इस तरह पाना हुआ और भगवान महावीर का पाना हुआ चंदन बाला का एक निमित्त बन गए पाना करवाने में। तो आगे का वृतांत कुछ देर थोड़ा चला, फिर आपकी तैयारी है महिला मंडल वगैरह की। अच्छा तो आपका गीत पहले कर दो। तो अब कोई बड़ी बात ये है तो एक दो मैं ले लेता हूँ, फिर आपका थोड़ा सुन के फिर आगे वापस कर देंगे। हाँ साढ़े ग्यारह ठीक है, माफ करो साढ़े ग्यारह।
चंदन बाला का परमपिता परमेश्वर भगवान महावीर सर्व कल्याणकारी 24वें अति शंकर ने जो इस तरीके से उनका उद्धार किया, अब देखिए भगवान का 13वां जो साधना काल है, भीषण कष्टों को सहते हुए भगवान जम्बीय ग्राम। भाइयों और बहनों, ये बड़ी विशेष बात है कि जो हम ये भगवान का वृतांत इतिहास सब देख रहे हैं वो आज स्थान भी हमारे पड़ोस में सारा बिहार में, भगवान का प्राय प्राय विचरण बिहार में हुआ था, तो इसीलिए सहज ही कुछ लोग बिहार में निवास किए हुए जाते हैं, समय शिखर जी वगैरह हम कई जगह जाते हैं और गुरुदेव पधारे थे तो बिहार में हमने भ्रमण किया था, तो सहज ही हमको ये जो इतिहास जो बता रहे हैं ये थोड़ा चिर परिचित था हमको लगेगा, तो हमको बहुत ही जल्दी ये ग्राह्य होगा। और इतिहास का अपना महत्व होता है और स्थान का अपना महत्व होता है, स्थान हमारे ही देश में है, हमारे ही पड़ोस में है, इसीलिए सब चीज हमको बहुत अच्छी लगेगी। तो अब जम्बीय ग्राम के बाद में के बाहर रिजु बालिका नदी हम जाते हैं जब तीर्थ यात्रा करने हैं समय सिगर जी, तो ये रिजु बालिका नदी हमको मालूम पड़ती है, उसके किनारे श्यामक गाथापति के खेत में शाल वृक्ष के नीचे भगवान ध्यानारूढ़ हुए और ध्यान में जो एकाग्र होकर के शुक्ल ध्यान की स्थिति को प्राप्त किया और क्षपक श्रेणी गुण स्थान की क्षपक श्रेणी 8वीं श्रेणी है। कोई भी जीव को केवली बनना है, तीर्थंकर बनना है, मोक्ष जाना है, क्षपक श्रेणी मुख्य है। जैसे आपका कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है और भारत के सब कोनों में यहां से जाया जा सकता है, तो मोक्ष जाने के लिए क्षपक श्रेणी एक सेंट्रल जगह है, यहां आना ही पड़ता है। भगवान ने क्षपक श्रेणी ली और क्षपक श्रेणी लेते ही शुभ अध्यवसाय हुए भगवान के, शुभ भाव हुए और भगवान ने 11वां गुण स्थान 9वां दशमक बाद 11वां छोड़ते हुए, 11वां गुण स्थान उपशमन का है और उसको स्पर्श करने पर जीव पुनः पहले गुण स्थान में आ जाता है, तो भगवान ने 11 को छोड़ते हुए 10 में से सीधा 12वां गुण स्थान जो है वो प्राप्त किया और 4 घनघाती कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, इन चारों कर्मों का घात करके भगवान वीतराग बने। वीतराग 12वां गुणस्थान है और 13वां गुणस्थान और 12वां गुणस्थान में सिर्फ अंतर मुहूर्त का अंतर है। ये हमारे गुणस्थान की कभी बात चली, अब क्या चलेगी, तो इतना सुंदर इसका विवेचन है। और 12वें और 13वें गुणस्थान के अंदर जो समय है वो अंतर मुहूर्त का, अंतर मुहूर्त को हर जैनी को समझना है, द्रव्य और भाव को हर जैनी को समझना है, और जीव जीव को हरेक को समझना है, और नव तत्व षट जव दिकाय और षट द्रव्य, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इनको हर जैनी को समझना है। और इनको समझेंगे तो भगवान महावीर का अहिंसा परमो धर्म हमें समझ में आएगा। तो अब 13वां गुणस्थान मात्र अंतर मुहूर्त का बाकी है। भगवान ने 13वां गुणस्थान पे आए और वो केवली बन गए। केवली कब बनते हैं कि जो है वो ये जो 12वें गुणस्थान के अंदर, तो वो केवल वीतराग बनते हैं, मोहनीय कर्म का क्षय करते हैं। 13वें गुणस्थान में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का नाश करके भगवान केवली बन गए। अब देखिए केवली बनने के बाद वो सर्वज्ञ बन जाते हैं, और सर्वज्ञ बनने के बाद में भगवान 30 वर्ष तक जो विचरेंगे और कितने कितने प्राणियों का उद्धार करेंगे, कितने कितने बड़े बड़े लोगों का उद्धार करेंगे, वो सारा हम विवेचन देखेंगे। तो अब क्या हुआ कि उधर प्रथम वर्ष के अंदर ही, यानी सर्वज्ञ होने के बाद ही, वहां पर एक शोमिल नाम का जो बड़ा जो है वो समोस वहां बड़ा एक जो है इनका जो सनातन धर्म का यज्ञ कर रहा था, और उस यज्ञ के अंदर बड़े बड़े पंडित आए हुए थे, 11 महान पंडित उसके अंदर उपस्थित थे। उधर से भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो सारे देवतागण जो है भगवान के अभ्यर्थना करने के लिए, दर्शन करने के लिए झुंड के झुंड वो आ रहे हैं। और जब देवतागण अपने ज्ञान में आते हैं तो वहां तीव्र प्रकाश होता है, वहां मणियों का हीरे पन्नों का तीव्र प्रकाश दिखाई दिया। और शायद उस सोमिल ब्राह्मण ने ये समझा कि ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि मैं वेदों का ज्ञाता हूं, ये वेदों का यज्ञ चल रहा है, उधर भगवान को जो है वो केवल ज्ञान हो गया है। तो अब क्या होता है कि उनको निराशा हुई, सबको, सोमिल को निराशा हुई कि हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं, वो तो कोई और तरफ जा रहे हैं। तो उनको जानकारी मिली कि यहाँ कोई इंद्रजालिया आया हुआ है, महावीर नाम का, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो एक एक करके जो है ये 11 महान पंडित जो है वो भगवान के पास में जो उनको हराने के लिए शास्त्रार्थ करने के लिए जाते हैं। तो वो उसमें से मैं संक्षिप्त में बता देता हूं कि पहला इंद्रबुद्धि, उसको आत्मा का अस्तित्व के बारे में जो है संदेह था, तो वो भगवान के सामने प्रकट हुआ। तो भगवान ने उसका नाम कहा कि इंद्रबुद्धि तुम आ गए। तो जब ये बात सुनी तो उन्होंने उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे कैसे जानते हैं, और एक एक का जो उनके मन में शंका थी उनका समाधान का गीत आपके सामने आ रहा है। उनके इंद्रबुद्धि के साथ में 500 शिष्य थे, और आत्मा के अस्तित्व के बारे में उनको जो है वो शंका थी। अग्निबुद्धि के 500 शिष्य के बारे में कर्म है या नहीं ये शंका थी, जिसका सबका समाधान होकर के वो सब उनकी दीक्षाएं लेते हैं। वायुबुद्धि 500 शिष्य तजवीज तस्रीवाद का संशय था, और व्यक्त को 500 शिष्यों के साथ 5 भूत है या नहीं, सुदर्मा को 500 शिष्यों के साथ में जन्मांतर के बारे में जो था, और एक एक करके सबके समाहित होते हैं, समाधान गीत में आपके आएगा। मंडित 350 शिष्यों के पास बंद और मोक्ष है या नहीं, उसका संशय था। मौर्य पुत्र के 350 शिष्य, देव और देवलोक के बारे में शंका, अकंपित के 300 शिष्य, नरक और नारकीय जीवों के बारे में, अचल भ्राता को 300 शिष्यों के साथ पुण्य पाप का संशय दूर हुआ, मैतार्य को 300 शिष्यों के साथ में पुनर्जन्म है या नहीं का संशय हुआ, प्रभास को 300 के साथ में मुक्ति के बारे में, इस तरीके से 11 तो ये सारे जो है महान पंडित और 444 उनके शिष्य सब भगवान को समर्पित होकर के दीक्षित हुए। अब देखिए भगवान की जो पहली सभा हुई उसमें सिर्फ देवताओं ने ही जो भगवान की देशना सुनी, देवता त्याग सत्कार नहीं कर सकते। बंधुओं कितनी बड़ी विचित्र बात है, देवगति तो प्राप्त हो गए लेकिन वो संवर धर्म का पालन नहीं कर सकते, कितनी बड़ी विडंबना है। और इसलिए भगवान ने संवर और निर्जरा धर्म बताया, तब वो नहीं कर सकते तो भगवान की देशना सार्थक नहीं हुई। अब इन सब ने जो है मिलकर के दीक्षा ली और इस तरीके से भगवान ने फिर अपनी दूसरी देशना सफल हुई और 11 के 11 ये गणधर कहलाए, जो कि बाद में जाकर के सारे आगमों का भगवान की वाणी को गुंफित करेंगे, वो आगम के रूप में आगे प्रसारित होगा। इसी आशय का गीत भाई कांति लाल जी करो।
जो 11 ब्राह्मण थे वो 11 गंधर्व और साथ में उनके शिष्य जिनकी टोटल थी 44 हो, इस प्रकार 44 हो 11 एक ही साथ में भगवान के पास शिष्य होते हैं, तो उनकी क्या क्या जिज्ञासा थी उसका वर्णन इस गीत में है।
गणधरवाद की सुनिए कहानी, झुक गए गणधर गौतम ज्ञानी, महावीर की चरण चरण पावन गए केवल ज्ञानी, गणधरवाद की सुनिए कहानी, झुक गए गणधर गौतम ज्ञानी, इंद्र भूति अग्नि वायु व्यस्त सुधर्मा मंडित हो, मौर्य पुत्र में साय प्रभात अचल असंभित पंडित हो, जिन शासन में की नहीं शानी, झुक गए गौतम गण गौतम ज्ञानी।
इनकी क्या क्या जिज्ञासा थी,
जीव का अस्तित्व है या नहीं, हो जीव का अस्तित्व है या नहीं, इंद्र की जिज्ञासा, शुभ अशुभ कर्मों का लेखा अग्निभूति की अभिलाषा, शंका संदेह की ना रहे निशानी, झुक गए गणधर गौतम ज्ञानी, वायुभूत का प्रश्न भगवन हो, वायुभूत का प्रश्न भगवन जीव और जर विनय, व्यक्त पूजिता पांच भूत है या नहीं मन किन्न है, वीर चरण में स्वयं बलिदानी, झुक गए गणधर गौतम ज्ञानी, अब कहे सुधर्मा वीर प्रभु से ओ, महावीर प्रभु से जीव इस भव में जैसा, वेता ही क्या होगा पर भव में या फिर कैसा कैसा, बंध मोक्ष मंडित की जवानी झुक गए गणधर गौतम ज्ञानी देवता है मजबूत ओ, 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 ओ देवता है मोर पुत्र और नरस अपकंपित बोलता पुण्य पाप है अचल घातप लोक में दारि देखता सम्यक उत्तर पाया चोरी मन मानी झुक गए गण घर को समझानी।